اسماءً سمیتموہا، نہیں ہے یہ مگر کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، یا جو جن چیزوں کے تم نے نام رکھ لیے ہیں. ہا کی ضمیر ان دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی ہے، اور سمیتموہا جو تم نے رکھ لی ہے. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، یعنی یہ تم نے کچھ نام دھرے ہیں یا تمہارے باپ دادوں نے چند چیزوں کے نام رکھ لیے ہیں پھر اس کی پوجا کرتے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس بارے میں کوئی اتھارٹی نازل نہیں کی ہے. یہاں بھی ہمارے ہاں لطیفے ہی ہوں گے، لیکن بعض دفعہ نام عجیب عجیب ہی رکھے جاتے ہیں، مزاروں کے بھی پتہ نہیں وہ اس نام کا کوئی آدمی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مظفر گڑھ میں کوئی پیر تھگڑ شاہ تھا، تھگڑ شاہ، اللہ عالم، بچپن میں سنا تھا. اور وہ بات صرف اتنی تھی کہ کوئی آدمی جا رہا تھا جنگل میں، تھل میں، راستے میں کوئی جانڈ کا درخت تھا، اس نے نشانی کے طور پر اپنا کوئی رنگ دار کپڑا اس پہ پھینک دیا، اور تاکہ واپسی پہ میں نشان راستے کا میرے ذہن میں رہے. کوئی اور گزرا، اس نے سوچا کہ یہ شاید کوئی دربار ہے، اس نے کہا کہ میرے فلاں مراد پوری ہو جائے تو میں بھی ایک کپڑا لٹکا دوں گا. اور یوں وہ ایسا ایسا وہ درخت یہ بن گیا کہ اس کی منت لوگ یہی مانتے تھے، میرا کام ہو جائے میں اس پہ ایک کپڑا. پھر اس کا نام تو کسی کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ کپڑے ہی اس پہ جمع ہوتے تھے، پیر تھے گڑ شاہ کا. وہ اس طرح سے سمجھ تو آنتم واپ، یوں بھی بعض دفعہ بنتا ہے کہ ہوتا نہیں کوئی، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی اتھارٹی، کوئی سند، کوئی حجت نازل ہی نہیں کی، یا دوسرے لفظوں میں کہیں اس کی کوئی نقلی دلیل نہیں ہے، کیونکہ نقلی دلیل بھی تو بڑا علم ہوتا ہے نا. یتبعون الا الظن، تم نہیں پیروی کرتے مگر صرف ظن کی، ایک گمان ہے. وما تحول انفس، اور اس چیز کی بس پیروی کیے جا رہے ہو جس کو چاہتے ہیں نفس. ہوا، ہوی یا ہوا، چاہنا، ہوا یا ہوی، میں نے تو تھا نا نیچے گرنا، ہوی یا ہوا، ہوی تو میں نے محبت کی، میں نے عشق کیا اس طرح سے. تہوا، جس کو چاہتے ہیں، انفس فائل ہے اور تہوا مؤنث کی ضمیر ہے، جو دل چاہتا ہے بس وہ کیے جاتے ہو، اچھا لگتا ہے تمہیں، یا تو یہ نری فضول بات ہے اور یا صرف ہوا نفس ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، اور آ چکی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت. یہ واو اگر حالیہ مانے تو بھی ہو سکتا ہے کہ جو من گھڑت چیزیں ہیں تحول انفس ان کی، اور جو بالکل موہوم چیزیں ہیں ان کی پوجا کیے جاتے ہو، حالانکہ کیے جاتے ہیں، غائب کا صیغہ ہے، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت بھی آ چکی ہے. اور چاہے تو واو کو استئناف کی مانے تو تاکید کے لیے ہو سکتا ہے، اور ضرور آ گیا ان کے پاس رب کی طرف سے ہدایت. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے ہے وہی چیز جس کی وہ تمنا کرے. تمنا یا تمنا، میم نون یہ سے ہی آئی ہے، میم نون واو سے نہیں ہے. باب تفاعل میں آیا تو اس کا معنی وہی جو اردو میں ہم تمنا، بلکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ماضی کا صیغہ الف کی طرح لکھ لیا جاتا ہے. اس کا مصدر عربی میں تو ہوگا نا تمنن، تو ہم تمنی تو نہیں بولتے، بس لفظوں کا رواج ہوتا ہے. حالانکہ تسلی اور تشفی اور یہ لفظ اردو میں آ گئے، لیکن تمنی ان من میں نہیں آیا، وہ بن گیا تمنا ہمارے ہاں، جو کہ اصل عربی کا تو ماضی کا صیغہ بھی شاید نہیں بنتا، الف کے ساتھ تو نہیں لکھتے. تو تمنا، جس کی اس نے تمنا کی، اب اردو میں ہم یہی تمنا کر سکتے ہیں، آرزو کی کر لیں، فارسی اگر لفظ لگائے تو آرزو کی. کیا انسان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ آرزو کرے، یعنی نہیں ملتی. فللہ الآخرت والاولی، بس اللہ ہی کے لیے ہے سب سے آخری بھی اور سب سے پہلی بھی، دنیا یا چیز یا سرائے. شاہ صاحب نے کیا ہے، دونوں مؤنث کے صیغے ہیں نا، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے فللہ دار الآخرت والدار الاولی، یا جو بھی کریں، یا بدعت الاولی، اللہ کے لیے جو انہیں معنوں میں ہو، والا اول والا آخر کی طرح، اللہ کے لیے ہے ابتدا بھی اور انتہا بھی. یوں کر لیں ترجمہ ہر چیز کی. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور بہتیرے ہیں فرشتے آسمانوں میں. کم من کی وجہ سے، کتنے نہیں ترجمہ کریں گے، بلکہ من کی وجہ سے خبریہ ہے، بہتیرے فرشتے ہیں. ملک واحد ہے، من کے ساتھ اس طرح واحد ہی آتا ہے مجرور ہو کر. آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ لا تغنی شفاعتہم شیئاً، نہیں فائدہ دے گی ان کی یعنی جن کی شفاعت کچھ بھی. بہتیرے فرشتے ہیں آسمان میں کہ نہیں دے گی उनकी शफात या सफारश कोई काम, यानी किसी को, काफरों को या किनको, इल्ला मिन बाद अन याजन अल्लाह, मगर बाद इसके कि अल्लाह इजाजत दे, बाद अन याजन अल्लाह, अल्लाह ने इजाजत दी या अल्लाह इजाजत देगा, लिमन यशाउ व यरदा, जिसके लिए चाहेगा और जिससे राजी होगा। लिमन यशाउ, ये तो एक तो उसकी मशीयत है, दूसरे व यरदा, और जिससे कि वो राजी होगा उसकी सफारिश होगी। और फिर मशीयत और यरदा के मैंने तो फिर अब मुफसरीन करते हैं जिसमें तौहीद होगी कम अज कम। यशा तो खैर अल्लाह की मर्जी है, लेकिन रजा शरीयत से मुतालिक चीज है। तो यहां सफारिश का जिक्र भी है, और शायद वो फरिश्तों की इबादत करते थे इसलिए कहा कि फरिश्तों की सफारिश भी अल्लाह के इज़्ज़न के साथ ही होती है, बजात खुद कुछ भी नहीं है, इसलिए शायद ये मज़मून पिछले के साथ मुतालिक है। इन्नल लज़ीन ला युमिनूना बिल आखिरत, बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, ला युसम्मूना अल मलाइका तस्मियतल उनसा, वो नाम धरते हैं फरिश्तों के, सम्मा युसम्मी लाम ताकीद का है, वो नाम धरेंगे या धरते हैं फरिश्तों के, तस्मियतल उनसा, ये एक तरह का मफूल मुतलक है, सम्मा था तस्मियतल उनसा आ गया, तस्मी आ गया ना मफूल मुतलक, फिर उसको इजाफत कर दी, उनसा का नाम यानी औरतों का, फीमेल का नाम, वो फरिश्तों के नाम रखते हैं, नाम धरना किसी फीमेल का, जैसे बच्ची का नाम, तस्मियतल उनसा के लफ्ज़ी मेहनत बनते हैं ना, बच्ची का नाम रखना, यूं समझ लीजिए, या औरत का है जनाने नाम, यही माना भी हो सकता है, या ये कि उनको वो फीमेल ही तो मानते थे, अल्लाह की बेटियां जो कहते थे, तो वो फरिश्तों के नाम रखते हैं औरतों का नाम रखने की तरह, यानी औरतों जैसे नाम, नाम रखना औरतों का, वमा लहुम बिही मिन इल्म, और नहीं है उनको इसके बारे में किसी किस्म का इल्म, बिही से मुराद यानी जो वो नाम रख रहे हैं फरिश्तों वगैरह के बारे में, इन यत्तबिउना इल्ला ज़न, नहीं वो पैरवी करते मगर महज बदगुमानी की, बदगुमानी या गुमान बल्कि, व इन ज़न, और जो गुमान है महज, ला युग़नी मिनल हक के शया, ये काम नहीं आता कुछ भी हक के मुकाबले पर, मिनल हक का यह मैंने होगा हक के मुकाबले पर, लफ्जी मैंने तो है हक में से किसी चीज को परे हटा नहीं सकता, असल मैंने तो यूं है, ला युग़नी मिनल हक के शयन, वो हक में से किसी चीज को परे नहीं हटा सकता, दफा नहीं कर सकता, काम नहीं आ सकता। फअरिद अम्मन तवल्ला, बस तू मुंह मोड़ ले उससे जिसने मुंह मोड़ लिया, आरदयोरदो के बारे भी होते हैं मुंह मोड़ लेना, और इसके साथ अन का सिला आता है, तवल्ला के बाद भी अन आता है और यहां आया है, तू उससे एराज कर, उससे मुंह मोड़ ले जिसने मुंह मोड़ लिया, अन जिक्र ना हमारी याद से, तवल्ला अन जिक्र ना, जो मुड़ गया हमारी याद से और हमारे जिक्र से, तू उससे एराज कर ले जो हमारे जिक्र से हट गया है, रूगर्दां हो गया है। वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, और उसने इरादा किया ही नहीं, यानी एक तो अल्लाह की याद से हटा और उसने कभी इरादा किया ही नहीं, इल्लल हयात दुनिया, मगर दुनियावी जिंदगी का, यानी जिसका मकसूद सिर्फ दुनियावी जिंदगी ही है, और इस तरह से वो हमारी याद से मुंह मोड़ गया है, तू उससे एराज कर ले। ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, ये उनकी पहुंच है इल्म की, मबलग ज़र्फ है पहुंचने की जगह, इंतहा, मबलागो हुम, ये उनकी पहुंच है, ये पहुंचने की जगह है, मिनल इल्म, इल्म में से, यानी उनके इल्म की पहुंच यहीं तक है, यूं कर के लेंगे उर्दू तर्जमा, लफ्जी तर्जमा तो है उनकी पहुंच है इल्म की यहां तक, यानी उनके इल्म की इतनी ही पहुंच है। इन रब्बका हुवा आलम बिमन दल्ला अन सबीलिही, बेशक तेरा परवरदिगार खूब जानने वाला है उनको जो कि भटक गया उसके रास्ते से, अनसबीले ही की जमीर अल्लाह ताला के लिए होगी, जो कि भटक गया अल्लाह के रास्ते से, वह होगा आलम बेमन तदा, और वो यानी अल्लाह ताला सब से ज्यादा जानने वाला है उसको जिसने पाई हिदायत, वो गुमराहों को भी जानता है और मोहतदीन को भी। वले ला माफी समावत व माफ लर्द, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में, लिया जजी अल्लज़ीना असाऊ बेमा अमिलू, ताकि یا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو لام عاقبت بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ تو اسی کا ہے، اور اس کا ہی یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ بدلہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کیے برے کام. الذین اساؤوا، اساء یسیئوا، سین واو حمزہ سے افعال ہے، برے کام کیے. بما عملوا، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے. لیجزیہ کے بعد یہ بے سبب ہی آئے، تاکہ ان لوگوں کو جزا دے جنہوں نے برے کام کیے بسبب ان کے عملوں کے. بما عملوا بعملہم، ویجزی الذین احسنوا، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے کیے اچھے کام. بالحسنہ، اب اس دو بے کے دو معنی ہو سکتے ہیں یہاں، نیکی کی صورت میں بدلہ دے، کیونکہ یوں بھی ہو سکتا ہے جزا ہو مثلا قضا، اس کو فلاں چیز بدلے میں دی، اور یوں بھی کہتے ہیں جزا ہو بے قضا، اس کو یہ چیز بدلے میں انعام دیا. اور بے کے معنی سببیہ کے بھی ہوتے ہیں، اوپر بما عملو میں تو سببیہ ہے، یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکی کی وجہ سے، یا الحسنہ ان کو جزا میں دے گا، یعنی اس طرح سے بے صلہ یوں بھی لگتا ہے. تو جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو حسنہ دے گا جزا میں، یا اچھے کام حسنہ کی وجہ سے جزا دے گا. الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ یعنی یہ جو ہیں یجزی الذین احسنوا کی ہی صفت یہ آگے چل رہی ہے، وہ لوگ، وہ حسنہ کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں جزا ملے گی، شاید اس کا آگے بیان ہے. یجتنبون کبائر الاثم، وہ بچتے ہیں گناہوں کے بڑوں سے، بڑے گناہوں سے. یہ کبائر الاثم ترکیب اضافی ہے، گناہوں کی بڑی چیزیں، لفظی ترجمہ کبیرہ کی جمع ہے کبائر، کبائر الاثم گناہ کی بڑی باتیں، یہ گناہ کی بڑی قسمیں کر لیں، اور کبیرہ گناہ ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش، اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، یہ بھی یجتنبون کا مفعول ہے، جیسے کبائر ہے مفعول، دونوں غیر منصرف ہیں. الا اللمم، مگر چھوٹے موٹے. لمم، لما یلمو کے اصل معنی تو ہوتے ہیں کسی چیز کے قریب پہنچنا، لما یلمو، بس اس میں معمولی دخل دینا. اس سے پھر لمم کا معنی کیا گیا ہے کہ گناہ کے قریب جا پہنچے کرے نے، ایک تو معنی یہ کیا گیا ہے لمم کا، اور بعد نے پھر اس کا معنی کیا چھوٹے گناہ، معمولی غلطی ہے لمم کا معنی، لیکن بنیادی معنی یہی ہے کہ کسی چیز کے قریب جا پہنچے لیکن وہ کرے نہیں، اس کو کہتے ہیں لمم، مصدر ہے لمم، لما یلم لممن، اور اس سے پھر اسم آتا ہے لمم، قریب پہنچ جانا. ہاں لمم مصدر ہے، اسم کے طور پر آیا نا پہلے، تو وہ قریب پہنچنا بس ہے الا لمم، اور اس کی وجہ سے مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں چھوٹے گناہ کہ، اور اصل معنی ہے کہ گناہ کے قریب جا پہنچے اگرچہ کرے نہیں، اب ارتکاب نہ کیا ہو. تو فواحش اور بے حیائیوں سے اور بڑے گناہوں سے بچے، مگر بعض دفعہ آدمی گناہ کے قریب بھی جا پہنچتا ہے یا معمولی کوئی غلطی ہو، یہ اس میں ہے. تو قرآن کریم نے مجھے کہا ہے نا کہ ان تن تربو کبائر ما تو نہ ہونا آن ہو، صورت ہم نے سامنے آیا تھا، گویا کہ بڑے گناہوں سے بچنا تو بنیادی مقصود ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب عموم بقات ہیں. تو چھوٹے گناہوں سے اور ہر گناہ سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، کم از کم بڑی چیزوں سے بچے، اور بے حیائیوں کا ساتھ ذکر کیا ہے. شاہ صاحب نے بھی اللمام کا ترجمہ گناہان صغیرہ ہی کیا ہے، عام معنی یہ کیا جاتا ہے، لیکن معنی ہے قریب پہنچ جانا کسی کام کے اگرچہ ابھی وہ کیا نہ ہو. لمام کے بنیادی معنی نزدیک پہنچنے کا ہی ہوتا ہے. نہیں وہ آلودگی بس یہ مفہومی کا ترجمہ ہے، اصل مصدر، اصل مصدر کا ترجمہ نزدیک پہنچنا ہے، مصدر ہے نا، لما یلمو کسی کام کے قریب جا پہنچنا. الما یلمو کا معنی ہوتا ہے کسی بات کے بارے میں تھوڑی سی واقفیت رکھنا، مثلا کہنا ہو نا انا علم بالعربیت المامن، کہ میں تھوڑی بہت عربی جانتا ہوں، یوں استعمال کریں. الما یلمو باب افعال سے آئے تھا، ہاں وہ تو المام ہوگا نا، ہاں جی. اور یہ ہے لما یلمو قریب ہونا، اور لمم کے میں نے کسی کام یا کسی چیز کے قریب ہونا اگرچہ اس میں ابھی داخل نہ ہوا. اشارہ
بھی دن صاحب نے یہی ترجمہ کیا کہ وہ لوگ کہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے، मगर नजदीक हो जाने से उन गुनाहों के।
हाँ बस, यानी उनके नजदीक तो जा पहुंचते हैं लेकिन चलिए, ये बुनियादी मैंने यही है। और फिर ये मफहूम का तर्जमा छोटे गुना, इन्न रब्बा का वासिउल मग़फ़िरा, बेशक तेरा रब वासिउल मग़फ़िरत है, खुली रहमत या मग़फ़िरत वाला है, जैसे शदीदुल इक़ाब है वासिउल मग़फ़िरत है। हुवा आलमु बिकुम, वो तुमसे खूब आगाह है, बे आता है, आलमहु व आलम बिही दोनों तरह ये इस्तेमाल होता है, वर्ब जो है आलमहु उसने उसको जान लिया, व आलम बिही वो उससे आगाह हो गया, तो कहीं कहीं ये इस तरह बे का सिला आता है। हुवा आलमु बिकुम, खासतौर पर जब ये अफल व तफजील में आए तो फिर तो बे ही इसके साथ लगता है। वो तुमको खूब जानता है, इज अनशाकुम, जबकि उसने तुमको पैदा किया, अनशा युनशो मिनल अर्द जमीन से, जब तुमको जमीन से पैदा किया, वो जमीन से पैदा की असल कहां से कहानी शुरू होती है उसको भी जानता है। वह इज अन तुम अजिन्न तुम फी बुतून उम्मातकुम, फिर वो मरहला भी वो जानता है जब तुम जनीन थे अपनी माओ के पेटों में। अजिन्ना जनीन की जमा है, जिमनू नून इसका मादा है, फिटस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जो किसी मादा के पेट में जब बच्चा होता है तो उसे जनीन कहा जाता है अरबी में, हैवान का हो इंसान का हो जो कुछ भी हो। जबकि तुम शाह साहब ने तो बच्चा किया, वैसे उर्दू में बच्चा ही आप करेंगे, लेकिन अरबी में इसके लिए कोई 8-10 लफ्ज हैं, वो इब्तदाई स्टेज से लेकर फिर जवान तक पहुंचने तक, गुलाम वगैरह तक वो करते हैं, 2-3 नाम तो वो रख लेते हैं पैदा होने से पहले पहले के। अजिन्नतुन तुम जनीन थे अपनी माओ के पेटों में, उस कैफियत को भी जानता है, अब जमीन से पैदा होने वाला तो फिर और भी कुछ पहले मरला होगा उसको भी जानता है, और तुम्हारी माओ के पेटों वाले मरले को भी जानता है। फला तो सकू अनफुसकुम, बस अपने आप को बहुत ज्यादा पाक ना बनाओ। यहां सक्का युजक्की के मैंने है पाक करना। अब एक लिहाज से ये मैंने बड़ा अजीब सा लगता है, कहें कि देखो जी अपना तज़किया ना करो, हालांकि वो तो हुक्म है कि अपना तज़किया करो। तो ये जक्का का एक खास मायना है अपनी तारीफ खुद करना नेकी की, क्योंकि इन मायनों में ये आता है, तो इस लिहाज से यहां तर्जमा होगा फला तो सकू अनफसा हुकुम, अपनी नेकी की बड़ी तारीफ भी ना किया करो, प्रोजेक्शन जाहिर यही मायना होता है। बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत का नाम बदल दिया था, उसका नाम था बर्रा, बर्रा बे के साथ, बर्रा के बर्र मैंने है ना बहुत नेक, तो बर्रा के मैंने बनते थे ना बड़ी पाक दामन है, बहुत ही नेक, मैं सितायश का पहलू निकलता है, अपना नाम ही सकर रखा है, शायद उसका नाम कुछ और बदल के नफीसा वगैरह करते हैं, सिर्फ इस वजह से बदला था। हज़रत के नाम बदलने का बड़ा बहुत कुछ मिलता है, किसी जगह के मुतालिक पूछते इस पहाड़ का क्या नाम है, नाम कोई बड़ा अजीब मसला न, फर्द कीजिए उसका नाम है जी इसका मैंने गम, आप कहते थे गम नहीं इसका नाम आइंदा खुशी रखना। तो इस तरह से भी बहुत से नाम जगहों के मकानों के आदमियों के आपने नाम, बहरहाल हमने तो खुद सबसे बड़ा खुद सताई का नाम लड़के का रख दिया था मलाब का उसकी सजा भी पाई फिर हमने। अच्छा वैसे अल्लाह उसे नेक ही बना रखे। अरब सऊदी अरब में जाने का एक उसे फायदा हुआ कि नमाज उसकी रग रग में घुस गई है ये देखा है कि नमाज का वक्त हो बस वो बेचैन हो जाता है कि पहले पढ़ ले जी फिर बाद में होगी। चलिए इस लिहाज से हो गया, तो फला तो सकू अनसकू का यहां मैंने उन मैनों में है, ये नहीं कि अपना तज़किया ना करो बल्कि अपने आप को बड़ा पाक साफ ना बनाओ, या अपनी शाह साहब ने इसीलिए कहा सितायश मकुने कि अपनी तारीफ ना करो, अपने मुतालिक डींगे ना मारो कि हम नाबगाए असर बन गए हैं, ये कुछ ये भी तो हो सकता है ना इसमें, अपने अपनी तारीफें खुद ना करो। होगा आलम बेमन इतका, वो खूब जानने वाला उसको जिसमें तकवा है, बेमन इतका, इतका यहां माजी का सीगा आया है, जिसने परहेजगारी की वो जानता है उसको, मन इतका जिसने की परहेजगारी। अफरा ए तल्लजी तवल्ला, क्या तूने देखा उस आदमी को जिसने मुंह मोड़ लिया, यानी उसके बारे में बताओ कि उसका क्या हाल होगा, ये कुछ अफरा ए था बताओ तो, खबर है तो देखा तो, तवल्ला उसने मुंह मोड़ लिया, व आता कलीलन व अकदा थोड़ा दिया, और अकदा युक्ति कि मैंने भी देते देते कोई चीज फिर हाथ रोक लेने के मेनू में आता है, यानी हाथ रोक लेने शायद तर्जुमा इसका बेहतर ही हो, यानी कोई चीज किसी को देते हुए फिर हाथ हाथ खींच लेना। शाह साहब ने तो किया सख्त दिल हो गया, असल में वो सख्त दिल का तो नहीं है, मैंने तो बुखल का ही है। उर्दू वालों ने क्या किया अकड़ा का तर्जमा, काफ दाल ये ही इसका मादा है। अच्छा ये सख्त फिर एक और लाज से मैना बना है, ठीक है। कहीं डिक्शनरी में ये पढ़ा था कि अकदा का मैना है कि जमीन खोदते खोदते नीचे से आ जाती थी कोई चट्टान, बाद दफा आगे खोदी ने, उस चट्टान को कहते हैं अरबी में कुदिया, कुदिया जमीन में बाद दफा होती है ना अरब में थी, जैसे खंदक खोदते वक्त आ गई थी। जिन इलाकों में पहाड़ियां होती हैं उनमें ये कोई पता नहीं, यहाँ लालिया चिड़ियोट के पास वो लोग बताते थे कि ऐसा भी है कि खेत में जरा हल नीचे गया तो पता चलता है कि नीचे चट्टान है, ऊपर बस कोई आधा आधा फुट मुश्किल से मिट्टी है, बाज जगह ऐसी भी होती है। तो वो उसको कहते थे कुदिया। तो अकदाक मैंने एक किए गए हैं कि आदमी ने वहां तक खोदा कि उससे आगे नहीं जा सका, फिर इससे वो सख्त वाला मैंने उन्होंने गाल बन लिया है, कुदिये चट्टान की तरह पत्थर की तरह फिर आ जाए,
फिर बंद कर दिया थोड़ा सा और फिर बंद कर दिया
बंद। ये भी एक मैंने बुनियादी तो मैंने यही बताया था ना कि यानी कि दे के फिर हाथ खींच लेना, बंद कर दिया, देता रहा को चरसा फिर बंद कर लिया, फिर शायद दिल सख्त होने का मैना वो उस मैंने में लिया हो कि साफ डाल ये से खुदिया के मैंने चट्टान के होते हैं और अकदा मैंने चट्टान तक खोदा कि फिर वो उसने उसको पाया कि अब तो ये पत्थर बन गया है, सख्त हो गया, थोड़ा दिया और फिर वो भी बंद कर दिया, वो उस चट्टान की तरह हो गया सख्त जिससे आगे खोदी नहीं जा सकती फिर जमीन। यू मैना और मफहूम होगा, पहले दिया भी तो वो भी कोई ज्यादा नहीं दिया, और आता से मुराद यहाँ रहा है खुदा में ही होगा और वैसे तो नहीं होगा। और
फिर
क्या चलिए आता कि मैंने तो ये दिया थोड़ा सा, लेकिन ये तफसीर ही है ना कि थोड़ा सा ईमान लाने लगा और वो अकदा इन आता मैंने कहा कि सरेंडर के मैनू में ले कि थोड़ा सा झुका और फिर सख्त हो गया, लेकिन सीधी बात तो है माल के बारे में बजाय ये आता का लफ्ज आता है। शाह साहब ने इधर तो उन्होंने कौन से शाह साहब का हवाला दिया, नहीं शाह वलीउल्लाह ने तो तर्जमा ये किया है वदाद अंद के अजमाल व सख्त दिल शुद्ध, वो कुदिया से ही मैंने लिया फिर उन्होंने सख्त दिल। बहरहाल ये मजमून पहले तीसरे पारे में आया है, वल नहमिल खताया जो आया था वो उस पस मंजर में होगा। यहाँ तो चलिए अफरा आयत अल्लज़ी तवल्ला, जिस तरह से आयत जिस जमाने में नाजिल हुई साफ मालूम होता है कि किसी शख्स की तरफ इशारा होगा, लेकिन वो कौन था वो मुख्तलिफ रिवायात होंगी वरना। और अब जनरल में ले क्या इस किस्म के आदमी को तुमने देखा जो शायद हमारी सोसाइटी में हो, हम खुद हो, इधर उधर पाए जाते हो, तो इसमें एक जनरल सेंस भी है। उस जमाने के लिहाज से यकीनन किसी पर्टिकुलर शख्सियत की तरफ इशारा भी होगा जिसको फिर मुफस्सरीन ने बयान किया फलां के बारे में नाजिल हुई है। वह आता कलीलम व अकदा लफ्जी में ना तो माल देने और फिर हाथ रोक लेने का है, लेकिन ये कि मुहावरे में आप लें कि जरा नरम तो हो चला था फिर सख्त हो गया, वो मुहावरे में लें और एक माना मुराद ले तो हो सकता है। عنده علم الغيب فهو يرى, क्या उसके पास है गैब का इल्म जिसकी वजह से वो देखता है या पस वो देख रहा है। عنده استفهاميه ہے عنده علم الغيب, क्या उसके पास है इल्म गैब, فهو يرى, अगर ये होता ना فيرى तो ये يرى نصب میں سمجھا جا سکتا تھا کہ اس کے سبب سے وہ دیکھتا ہے, تو فيرى کہنے کے بجائے کہہ دیا فهو يرى, یعنی وہ عالم غیب ہے اور وہ دیکھتا ہے। यरा से मुराद यरा का मफूल तो यहां नहीं है, लेकिन अगर गैब माना जाए तो इसका मानना है वो गैब की चीजों को देखता है, उन चीजों को देखता है जो लोगों की आंखों से छुपी हुई। क्या उसके पास इल्मुल गैब है जिसकी वजह से वो देखता है, फाव का माना तो वही सबब का ही होगा जिसकी वजह से वो देखता है, जैसे कि गोया कि आंखों से नजर आती है कोई चीज। अम लम युनब्बा बिमा फी सुहफ मूसा, क्या नहीं वो आगाह कर दिया गया बिमा उस चीज से जो कि थी फी सुहफ़ मूसा के सहीफों में वह इब्राहीमा और इब्राहिम के सहफ में। फिर आगे इब्राहिम की सिफत आई है अल्लाह की वफा, क्या उसको आगाह नहीं कर दिया गया उस चीज से नब्बा आयो नब्बे आगाह करना जो कुछ है सुहफ़ मूसा में। सुहफ़ जमा है सहीफा की, ये मुंतशिर औराक को कहते हैं जिनको सी के एक किताब की शक्ल न दी गई हो, वैसे यानी अलग अलग। तो अजीब बात है कि सारी दुनिया में मगरब में और अफ्रीका में इस्लाम पे अजीब तरीके पर अमल हुआ है। शुरू में कुरान मजीद के इसी तरह से सोहफ होते थे, फिर खैर अब हजरत उस्मान के जमाने में ही जो इधर कुरान मजीद आया वो तो फिर बाकायदा जिल्द वगैरह का था तरीका। लेकिन अफ्रीका में अब तक भी जिल्द नहीं बांधते कुरान में, हाँ जिल्द नहीं बांधते, सफे होते हैं बस ऊपर वाला पड़ा फिर नीचे कर दिया। बल्कि मैं एक सौ रियाल में लाया था एक नाइजेरियन से कुरान मजीद, बड़ा खूबसूरत वो नाइजेरिया का छपा हुआ। मेरी अब जरा मेरी एस्थेटिक सेंस पे वो बड़ा नागवार असर उसका पड़ा है कि मैंने उसको रिंग बाइंडिंग करा लिया दो पारों में, वो वर्क थे ना अलग अलग इसलिए रिंग, लेकिन रिंग बाइंडिंग में वो बात नहीं रही। मैं सोचता हूँ नहीं कराता तो बेहतर था। हाँ 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 किताब की तरह से वो सैचल में रखते हैं, सैचल बस्ता सा होता उसमें रखते हैं और फिर उससे पढ़ते हैं। तो इस तरह से सोहफ की शक्ल ही उन्होंने गोया के बरकरार रखी है, सोहफ सहीफा की जमा। मालूम होता है कि वो छोटे छोटे औराक ही होंगे चंद, इससे तो यही पता चलता है। सोहफ को जमा करें ना तो बहुत से एक और जिल्द करें तो फिर उससे बनता है लफ्ज मुसहफ जो कि कुरान करीम के लिए इस्तेमाल होता है। यानी बहुत से सोहफ जमा करके एक जिल्द बना दी वो ये अब बन गया मुसहफ। मुसहफ मिसहफ मसहफ तीनों तरह पढ़ा जाता है और ये कुरान करीम के मैनों में इन मैनों में आता है कि एक कॉपी ऑफ कुरान मसहफ। यानी मीम की तीनों हरकतें पढ़ सकते हैं, आम ज्यादा मुसहफ पढ़ी जाती है। तो सहीफा की जमा सोहफ और सोहफ को एक जिल्द में कर दिया जाए वो बनता है मुसहफ। और मुसहफ ये नाम रखा गया कुरान का इस वजह से कि अगर कहना हो ना जी यहाँ पांच कुरान मजीद पढ़े हैं, ये पांच कुरान कहना गलत है, पांच मसाहिफ कहें या कहें पांच नुस्खा कुरान। कुरान प्लूरल नहीं हो सकता, कुरान तो एक ही है। इस वजह से कि कुरान को तो प्लूरलाइज करना नहीं, और हम बात करते हैं जी छह नुस्खे हैं पांच हैं, तो हजरत उस्मान ने जब वो नुस्खे भेजे तो वो मसाहिफ कहलाए। सबसे पहले ये मुसहफ का लफ्ज हजरत बकर सिद्दीक के जमाने में जो जमा हुआ था उसका नाम मुसहफ रखा गया था। ये कहते हैं कि यह हबशी जुबान का लफ्ज है। बहरहाल कुरान में मुसहफ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ लेकिन सहीफा और सोहफ का हुआ है, उसी से ये लफ्ज बनता है कापी ऑफ कुरान। फारसी में हमने देखा है कि आम लिख देते हैं कुरान हाय करने बेचतुम, ये भी रॉन्ग है। और अंग्रेजों का तो खैर शिमल वगैरह की किताबें हैं कुरान वो अक्सर ऐसे लगा के करते हैं, ये गलत है नुस्खा है कुरान। लेकिन ये कुरान को ऐसे नाम एक किताब छापी है उसका नाम रखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ताज कंपनी ने, तो वो बात लगती है जी भाई। मैं नुस्खा लेने गया तो उस आदमी को कहता है चौधरी साहब और मोहम्मद रसूलुल्लाह लाए भाई। किताब का नाम है लेकिन वो लगता है अजीब है ना कि। तो सोहफ मूसा व इब्राहिम, इब्राहिम और मूसा के सहीफे से मालूम होता है कि छोटी छोटी किताबें थी। और अगर टेन कमांडमेंट्स थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तो वो तो बहुत ही मुख्तसर है। और इब्राहिम की सिफत है अल्लज़ी वफ़ा जिसने बहुत ठीक हक अदा किया, वफ़ा युवफ़ी तौफिया पूरा पूरा देना लज़ी मैंने तो आपने पढ़ा है।
तो इब्राहिम के सहीफे के मिलते
पता नहीं, अब तो अवेलेबल नहीं है, कुरान ने उनका जिक्र किया ऐसे मालूम होता है कोई होंगे दो जगह सब उसका मिली, यहाँ जिक्र है कि इसमें बारे में सोहफ इब्राहिम और मूसा। यहूदी कहते हैं कि दीन तो उनका तौरात है ना जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाए, शरीयत तो वहां से शुरू हुई लेकिन उधर इब्राहिम भी उनके दादा और जद्दे आला और सब कुछ है। तो फिर उनके यहाँ एक कौल पढ़ा है किताबों में कि इब्राहिम ने पूरी तौरात पर अमल किया पेशतर इसके कि तौरात नाजिल हो, यानी तौरात नाजिल बाद में हुई लेकिन इब्राहिम तौरात के मुताबिक जिंदगी बसर करते थे। ये दरअसल उस जवाब में कहा कि कोई हलाल हराम के मसले थे तो बाद में जो हुए ना तौरात में हराम, वो कहते थे इब्राहिम के जमाने में भी हराम थे, जैसे वो ऊंट के गोश्त वगैरह के सिलसिले में आया था तो वो कहते थे वो तौरात पे अमल करते थे, हालांकि उनके 600 साल बाद नाजिल हुई है। तो इब्राहिम अल्लदी वफा, यहां अल्लदी वफा तो उनकी वफादारी और उस्तवारी जो उनकी थी मोहकम ईमान की, उसकी तरफ इशारा है। शाह साहब ने किया जो कि वफादार थे, लफ्जी मना है जो उसने पूरा पूरा दिया, यानी अपना अहद पूरा किया। अल्लाह ताज़र वाज़रतुम विज़रा उखरा, यही बात थी सोहफ मूसा और इब्राहिम में कि अन ला, ये अन ला है जो मिला के लिखा गया है, नून उड़ा दिया जाता है, अन ला ताज़र वाज़रतुम के नहीं उठाएगी कोई बोझ उठाने वाली विज़रा उखरा दूसरे का। एक तो उनमें यह था हर शख्स अपने नाम आमाल का जिम्मेदार होगा, दूसरा उसमें यह बात भी थी वह अन लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि नहीं है इंसान के लिए मगर वही जिसके लिए उसने कोशिश की। लैसल इंसान नहीं है इंसान के लिए इल्ला मगर वही चीज मा सा, यानी मा सा लहू, यहां या सा हो सा लहू ही आता है असल में, वो तो नहीं आता, जो उसने कोशिश की सा या सा दौड़ा कोशिश की। व अन सहू सौफयरा, इसी सहा का मसलर होता है सायन, सायन दौड़ लगाई कोशिश की, और ये कि उसकी साय उर्दू में चूंकि ये साय इस्तेमाल होता है, शाह साहब ने तो वही तर्जमा किया है, उसकी कोशिश सौफयरा अन करीब देखी जाएगी। अन्ना का इस्म है सायहू, उसकी कोशिश, और सौफयरा एक पूरा जुमला है, अन करीब युरा मजहूल है, देखी जाएगी। उर्दू में हम मुअन्नस का तर्जमा कर रहे हैं क्योंकि कोशिश का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया, वरना असल साय मुज़क्कर है और अरबी सीगा भी मुज़क्कर आया है, देखा जाएगा यूं होना चाहिए था ना तर्जमा तो, लेकिन उर्दू की वजह से वो मुअन्नस का इस्तेमाल होता है। हाँ मैंने तो मजहूल का ही है ना, दिखाई जाएगी, उन्होंने दिखलाना किया ना, दिखलाना और दिखाई एक ही बात है, देखी जाएगी है तो, यानी युरा वो सामने आएगी, मतलब तो ये है, और रा यरा का ये मजहूल ही तो है, ये नहीं कहा कि अन्नसा यहू सौफ यरा, फिर तो मैंने ही गलत कहा, वो देखेगा अपनी साई को, अन्नसा यहू सौफ यरा होता ना तो मैंने होता कि वो अनकरीब अपनी कोशिश को देखेगा, अब है उसकी कोशिश अनकरीब दिखाई जाएगी, यानी नजर आएगी सामने। सुम युजाहुल जजा अल्लाफा, ये भी मजहूल है, फिर उसको जजा दी जाएगी उस इंसान को, अल जजा अल औफा पूरी पूरी जजा, ये युजा का मफूल हो सकता है क्योंकि इस पे अलिफ लाम भी लग गया और सिफत आई है, लिहाजा मफूल मुतलक गालबन अब नहीं हो सकता। अगर सुम युजाहु जजा अन होता ना फिर मफूल मुतलक होता, लेकिन अब इस पे अलिफ लाम लग गया है, औफा उसकी सिफत आई है, लिहाजा ये युजज़ा का दूसरा मफूल है नसब में, अब मफूल मुतलक ने भी नसब में होना था और ये मफूल भी ही कहेंगे, उसको दिया जाएगा जजाए औफा, औफा के मैंने भी हुई है, अफल तफजील है पूरी पूरी, ये अफल तफजील का सीगा है, वैसे माजी का सीगा भी हो सकता है औफा, यहां नहीं है, उसको दिया जाएगा युजज़ा हो, वो दिया जाएगा बदला अल जजा अल्लाफा, बदले में पूरी जजा, यानी उसको ठीक ठीक बदला दिया जाएगा। वह अन्न इला रब कल मुंतहा, और ये बात के ये भी शायद सोहफ मूसा से मुतालिक है कि ये बात भी या ये हकीकत अलग बयान करे है कि तेरे रब की तरफ ही है आखिर अंजाम सब, अल मुंतहा जहां टर्मिनल, यानी जहां उससे आगे फिर ना कहीं जाना हो, तो वो अल तेरे परवरदगार की तरफ ही है, यानी आखिरी बार लौट के जाना वही है सब का किस्सा खत्म होना। वह अन्नहु हुवा अवहा का वह अब का, अब या तो इसका ताल्लुक उसी पिछले से है कि अमलम जो नब्बा बिमा से और अन शुरू हुआ था, या ये अलग मजमून के ये भी हकायक हैं जो अब बयान हो रहे हैं, चाहे ये उन किताबों में बयान हुए थे या वो खत्म हो जाए इस यहां तक, लेकिन खत्म होता नजर नहीं आता, बहरहाल बगैर तो यही मालूम होता है कि अन ला से जो बात शुरू हुई है वही चल रही है। अन्नहु हुवा अबहा का वा अब का, कि बेशक वही हंसाता है और रुलाता है, लफ्जी मैंने तो माजी का है, उसी ने हंसाया और रुलाया, अवह का और अब का रुलाया, ये दोनों बाब इफ़ाल है। वह अन्नहु हुवा अमात व अहया, और बेशक वो ही है यानी अल्लाह ही जिसने के जिंदा किया, जिसने मारा और जिंदा किया, अमाता और अहया, ये भी दोनों बाब इफ़ाल के माजी के सीधे हैं, या करता है यूं कर लें। वह अन्नहु खलक ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, और वो ही है जिसने पैदा किया ज़ौजैन को, दो जोड़ों को, अज़कर वल उन्सा, ये उसका बदल आ जाएगा, या तफसील समझ लें, जोड़े यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, नर और मादा, उसने पैदा किए दोनों जोड़े यानी नर और मादा। मिन नुत्फतिन इज़ा तुमना, नुत्फा से जो के फेंका जाता है, अमना युमनी, इसका ये मजबूल है, और इसके माने एक तो होते हैं बीज डालना, दूसरे इसका यानी नुत्फे का एमिट होना जो है ना वो मुराद लिया जाता है, और ये बाबे इफ़ाल की सूरत में ये आता है, मना यमनी से नहीं आता, मना यमनी के मैंने तो कुछ और होते हैं भलाई देना जी। ये मीम नून ये मादा है, अमना युमनी उससे मजहूल बनेगा, फेंका जाता है उस नुत्फे से जो के फेंका जाता है। शाह साहब ने इसीलिए तर्जमा कर दिया चू रेख्ता शवद दर रहम, ये बहरहाल तफसीरी तर्जमा है, लफ्जी नहीं है, लफ्जी मैंने अमना युमनी के बल्कि बीज डालने के भी होते हैं, फेंकना बखेरना इन मैनों में भी आता है, तो वो उस नुत्फे से जो के डाला जाता है, उर्दू तर्जमा डाला जाता ही कर ले सकते हैं, उर्दू वालों ने क्या किया, टपकाया गया, हाँ डल, ये मजहूल है ना असल में, तो टपकाया गया फिर करें, हाँ वो मजहूल से ही तर्जमा किया, तो उससे वो उसने जोड़े पैदा किए, वही नुत्फा वाला शेर फिर याद आता है ना, वो फारसी वाले ने क्या गजब का शेर कहा, देहद नुत्फा रा सूरत है चू परी, पता नहीं चे है या के है, दोनों ही लग सकते हैं आगे, चिकर दस्त बर आब सूरत गरी, क्या पानी पे नक्काशी की है, पानी पे कौन पेंटिंग कर सकता है। वह अन्ना अलैहिन नशअतल उखरा, और ये भी हकीकत है कि ये सारी हकीकतें बयान हो रही है एक लिहाज से कि रब की तरफ ही अंजाम है, वही रोनाले हंसाने वाला है, वही मारने जिलाने वाला है, रोना हंसाना जिलाना रुलाना से मुराद इंसानी हालात बदलने की तरफ इशारा है, और उसी ने ये सब पैदा किए नुत्फे से। अब अन्ना अलैहिन नशअतल नुक्रा, और उसके ही जिम्मे है वो दूसरी पैदाइश, आखिरी नहीं, दी अदर वन नशात मैंने पैदाइश, नशा अंशा पैदा होना, उगना बढ़ना, अनशा अंशो पैदा करना, तो नशात मैंने होता है पैदा होना, नशा अंशा से, तो वो दूसरी पैदाइश यानी एक और पैदाइश ये भी उसके जिम्मे है, यानी वो देगा और लाएगा। ये हमारे यहां नशा सानिया कहते हैं कि नहीं, इस्लाम की नशत सानिया, वो इसी से लिया गया ना कि नशत के मैंने पैदा होना यानी एक और जिंदगी हासिल करना, देना नहीं, जिंदगी देना के लिए इंशा होगा, जिंदगी पाना के लिए नशत का लफ्ज होता है। वह अन्नहु हुवा अगना व अपना, और वही है जिसने माल दिया, अगना व अपना के मैंने भी है किसी को पैसा देना, सरमायादार करना, अपना का मादा फाखनून वाव है, कना यकनु से ये बाब इफ़ाल है, इसके मैंने किसी को देने के हैं, और अगर ये बाब इफ्तियाल से आए इकतना यकतनी के मैंने होते हैं टू ओबटेन हासिल करना, और अपना युकनी देना, तो वही है जिसने माल दिया और बहुत कुछ दिया, मुराद तो यहां भी माल ही लगेगा, तो और अगना के मैंने अमीर बनाया, तवंगर कर दिया और माल दिया, अकना माल दिया हुई यानी अमीर बनाता है, अगना और अकना के दोनों मिलते जुलते लफ्ज ही है, हम माना ही है करीबन, उसने अमीर बना दिया, उसने माल दिया। वह अन्नहु हुवा रब्बु शायरा, और वही तो शायरा का रब है, अश्शायरा ये किसी सितारे का नाम है, पता नहीं अंग्रेजी में इसके लिए क्या कहते हैं, बहरहाल अरब लोग किसी खास सितारे को, और फिर उसमें कोई मानते थे कि मुमकिन है पूजा करते हो, बाज कहते हैं कि यमन के लोग उसकी पूजा करते थे, वल्लाह आलम, किसी खास सितारे की जैसे सुरैया और जोहरा और इस तरह से है, तो इस वजह से कहा है कि वो तो उस सितारे का भी परवरदिगार है, तो पूजा करते होंगे तो ये कहा होगा, वरना वो तो सारे सितारों का परवरदिगार है, तो एक शुअरा का जिक्र क्या करना था, तो उसकी कोई खास उनके यहां सिग्निफिकेंस होगी रिलीजियस, तो वो तो शेरा का भी मालिक है। शेरा गोया के नाम है, वो भी मादा तो शीन है, रे ही है। और ये अजीब वजन है, शोरा भी नहीं कि हम इसे कहते, फोला का वजन है शेरा, शीन की इसी तरह जेर के साथ खोला जाता है।
अपना
क्या अगना अकना
दौलत,
फर्क क्या हुआ? माल दिया अगना का मैंने उसने तमंगर बना दिया, अकना मैंने माल दिया, अकना के मैंने देना और इकतना मैंने लेना। बहरहाल मिलते जुलते लफ्ज होते हैं ना। और वो वही है जिसने पहले आद कबीले को बर्बाद किया, आदन इल उला, यानी असल में था अहलका आदन, उसने हिलाक किया आद को। और आद की सिफत है अल उला, उला मुन्नस सिफत है ये, क्योंकि आद कबीला है। उसने पहले आद को, इससे फिर अरब लोग कहते हैं कि एक आद उला थे एक आद उखरा थे, यानी आद नाम की गोया के दो कौमें कोई अरब में कदीम हुई हैं, एक पहले कोई बर्बाद हुए थे एक कोई बाद में हुए, बाद वाले शायद वो हैं जो यमन वगैरह के जिनका सद मारव था, और अहल आद उला वो हुए हैं जिनका वो हजरत हूद जिनकी तरफ आए थे उनको। दो कबीले मुख्तलिफ, यानी जैसे लेटर और ओल्ड स्टेज वाले कहते हैं इन मानों में, वो पहले आद जो थे उनको उसने बर्बाद किया। वह समूदा फमा अबका, ये समूदा यहां नसब में है अहलका का मफूल होकर। और ये अजीब बात है कि समूदा है गैर मुनसरिफ, लेकिन इसके साथ नसब में अलिफ लिखा होता है, जैसे कि समूदन लिखना था और फिर लिखते लिखते रह गए। इस तरह से यानी है गैर मुनसरिफ, ये अलिफ फिर जायद लिखा जाता है। वह समूद वरना बनना चाहिए थे ना वह समूदन, गोया के अलिफ इस बात की यादगार है कि समूदन था, लेकिन पता नहीं फिर वो है नहीं, गैर मुनसरिफ है। फमा अबका, पस उसको ना छोड़ा। ये समूदा की नसब फमा अबका की वजह से नहीं, आला का मफूल है, यानी उसने आद को भी बर्बाद किया समूद को भी, फमा अबका और फिर ना छोड़ा, बाकी रखा अल्लाह ने, यानी किसी को यू अंडरस्टूड है, फमा अबका पस कुछ भी ना बचाया। क्यों वो तो ठीक है
नहीं,
तो इसी तरह से तो है,
इसमें तो
हमजा लिखा हुआ। अच्छा ये काबिल गौर चीज है, फिर इसकी शायद रस्म अल खत यही हो सकता है।
इन्होंने
नहीं लिखा, फिर ये गलत है। ये हमारे यहाँ बाज दफा रस्म खत उस्मानी को छोड़ देते हैं, और बाज दफा ऐसा कि जहाँ नहीं है वहां भी वो लिख देते हैं इस तरह से। तो ये वाव पर हमजा कहीं कहीं लिखा जाता है, ये फिर इन्होंने गलत लिखा है। हाँ तो रस्म खत उस्मानी भी एक बस कहीं अंजुमन खुदामुल कुरान एक काम ये कर देना, एक कुरान छाप दे, और आप लोग काम करें लग जाए दो दो पारों को और तहकीक कर डालें कि जनाब ये है मुख्तलफी रस्म और ये है मुत्तफक तलह। 10-12 आदमी लग जाए तो 6 महीने में काम कर सकते हैं। अच्छा बहुत इफरात तफरी से कहा नहीं, ये इन्होंने काफी मेहनत की है, ये जो सऊदिया वाले तो अब सेठ बन गए पैसे वाले, तो खामखा ये लाए नकल मारी है सारी, वो शाम वाला कुरान मजीद छाप दिया इन्होंने, पैसा शाह साहब का लगा तो अब फिर बन गए, वरना मिस्र ने ये काम किया था सबसे पहले। हाँ उसमें है, इन मानों में है कि जो इन्होंने लिखी है ना चीजें, ये सारी मुत्तफक अलह नहीं है। और हमारे कुरान मजीदों को ये जो टोटली गलत करते हैं ना कि बर्रे सगीर के इधर आए नहीं, ये बात मेरी गलत है, उनमें बात चीजें मुत्तफक अलह है, उन पे होना चाहिए एक नुस्खा के इसमें इख्तलाफ हरगिज ना हो। और जहां ये साबित है कि जी कूफे वाले नुस्खे में ये लिखा था और शाम वाले में ये लिखा था, तो फिर उसमें तो जो एक इख्तियार कर लिया, क्योंकि उसूल यह है कि हजरत उस्मान के 6 नुस्खों में से किसी के मुताबिक होना चाहिए, तो फिर उस पर आप क्यों एतराज करें। और ये बहुत से अल्फाज है इस तरह के जिनमें ये, बल्कि अभी जो लीबिया वालों ने छापा है ना कुरान मजीद, कजाफी ने जो छपाया है, उन्होंने ये किया है कि इस पे किताबें लिखी गई है रस्म खत पर, कुरान के एक एक लफ्ज पर कि ये कैसे लिखा जाता था, कैसे लिखा जाता था। लेटेस्ट किताब वो कर्नाटक वाले ने लिखी है 6-7 जिल्दों में, नसरुल मिरजान, और पहली तो बड़ी थी। एक अजीब बात यह है कि आलम इस्लाम में बाद उलूम मगरब में पले और बाद मशरक में पले। मदन हदीस और उसकी तदवीन का काम सारा मशरक में हुआ, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई वगैरह सब इधर मशरक के उलमा। हदीस पे इन्होंने काम किया, कलेक्शन बनाया तदवीन की, कंपाइलेशन की, और यही मगरब में जाके चली। यानी उन लोगों की कोई, मगरब वालों की कोई हदीस पे कंपाइलेशन नहीं है। और कुरान मजीद के एक एक लफ्ज की स्टडी के बारे में वो बारीक बारी से उन्होंने काम लिया, और वो मशरक वालों ने नहीं लिखी किताबें। तो मैं इन दो फनून पे हैरान होता हूँ कि हदीस इधर डिवेलप हुई सारी और किताबें लिखी गई और राज वहां हुए, और जो कुरान के रस्मुल खत और किरातों का इल्म है इसमें उन लोगों ने इख्तिसास किया, उनकी किताबें हैं सारी दुनिया में, और मशरक वाले हत्ता के शिया तक भी उन्हीं की किताबों को कबूल करते। मशहद का निकलता है नामा आस्थान खुद से, रिसाला मशहद से, उसमें एक मजमून पढ़ रहा था। मैंने सोचा कि रस्मुल खत के बारे में इसने तो शियों की किताबों का जिक्र किया होगा कि उन्होंने कौन सी लिखी, वही दामी की किताबें और वही उंदलुस वाले, उनके नजदीक भी वही मुसलमान इस तो नहीं है। हकीकत यह कि जो कुछ पहले मवाद था उसमें से चुन के थे एक मुरतब किया, घड़ी चीज तो नहीं है। तुम दानी ने इसी तरह से कुरान के बारे में किताब जमा कर दी। अच्छा, उसका एक शागिर्द था सुलेमान, अबू दाऊद सुलेमान बिन नजा, उसने फिर अपने उस्ताद से भी, शायद दामाद भी था शागिर्द तो जरूर था, फिर और किताबें भी ली, फिर उसने भी एक किताब लिखी रस्म पर, वो अभी छपी नहीं है, मखतूता ही मौजूद है कहीं कहीं 2-4 जगह पर, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने उसको सामने रखा है। अच्छा, अब कहीं कहीं रस्मुल खत में दानी और अबू दाऊद में इख्तलाफ होता है कि वो कहता है जी अलफ के साथ था, ये कहता नहीं अलफ के बगैर लिखा जाता था। तो जो मिस्रियों ने और सऊदियों ने कुरान छापा ने, इन्होंने कहा कि जहां दोनों में इख्तलाफ होगा हम अबू दाऊद की बात को तरजीह देंगे। लेकिन अब लीबिया वालों ने छापा, उन्होंने लिखा कि जहां दोनों में इख्तलाफ होगा वहां हम दानी को तरजीह देंगे क्योंकि हमारे इलाके के उलमा का इस पर अमल है। तो उन्होंने लिखा कि 136 मुकामात ऐसे हैं जिनमें उन्होंने ये मिस्री और सऊदी कुरान मजीद से, और इख्तलाफ इसी किस्म का है कि यहां किताब अलिफ से लिखना है या अलिफ के बगैर लिखना है, ज्यादातर वो अलिफ का ही है। और बल्कि उन पर सलीबिया वालों ने एक निशानी भी अजीब डाली है जो आम कुरान मजीदों में नहीं होती, जैसे ये होता है टिक मार, यू वो ना अलिफ लिखते हैं, ये टिक मार्क देके उन्हें 136 मुकाम पे लिखता है, यानी युखाद और ऊना खे के ऊपर ये निशान हो कि मतलब ये है कि ये यख बाऊना भी पढ़ा गया था और युखाद और ऊना भी, दोनों की गुंजाइश है। तो उससे लिबिया वालों ने ना दबर ना अलिफ ना वो, उन्होंने ये टिक मार्क, इसका नाम भी कुछ और उन्होंने रखा है। इस लिहाज से बर्रे सगीर के कुरान मजीदों के मुताबिक लिखा जाए कि भाई ये हमारे यहाँ रायज है। वो फतवे भी आए कि अब मशरक वालों ने बाज जगह जो अलिफ लिखना या उड़ाना शुरू कर दिया तो उसको अब इजाजत दी जा सकती है, वो समझा जाएगा उस किस्म के लफ्जों में। मसलन इंसान का लफ्ज है, अब हमारे यहाँ ये सीन अलिफ सा से ही लिखा जाता है, हालांकि रस्म उस्मानी में ये पक्की बात है अलिफ नून सीन नून, बस इस तरह से। हाँ, शैतान इसी तरह से स्टोए के बाद नून, तो इसमें जो की बातें हो वो तो लेनी चाहिए। इंसान अगर हमारे यहाँ अलिफ से लिखा जाता है तो ये गलत है, लेकिन अगर कहीं हम तो कज़्ज़बान को लीजिए, तो कज़्ज़बान हमारे यहाँ अलिफ के बगैर लिखा जाता है बे नून मिला के, कभी आला अरबिक मा तो कज़्ज़बान, और रिवायत दोनों है कि जी अलिफ के साथ भी था और बाद में अलिफ के बगैर भी था। अब इन्होंने अलिफ के साथ लिखा है सऊदीया और मिस्रियों ने, तो कज़्ज़बान बे अलिफ बा, हम कहते हैं कि अगर हमारे मुल्क का यही तो कज़्ज़बान रहने दे तो क्या हार गया, इधर के लोग उसके आदि हो गए और आपके यहाँ इख्तलाफ है, तो सही इख्तलाफ है नहीं, इस वक्त तो कोई मौजूद नहीं, सच्ची बात यह है नहीं। कहते हैं सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो ताशकंद वाला ही है, और डॉक्टर हमीदुल्ला का कहना यह है कि तुर्की में कहीं मौजूद है नुस्खा, लेकिन उन्होंने बहुत छुपा रखा था, वो इस वजह से मालूम होता है कि फखरी पाशा वर्ल्ड वार फर्स्ट में जब उसने वो रिट्रीट किया ना मदीना से वापस हुए तुर्क, तो कहते हैं कि रूम उसका जो मदीना मुनव्वरा में था वो साथ ले गया था। अच्छा, इस साथ ले जाने की फिर हम बात में दूर चले गए, आज तक फिर पढ़ा ही कुछ नहीं हुआ। ये है कि साथ जाने का कोई वाकया जरूर हुआ है। गालबन उन्होंने फिर तुर्की को भी जब खतरे में देखा तो कहते हैं कि ये जर्मनी में नुस्खा भेज दिया था उन्होंने, हिफाजत के लिए भेजा होगा या क्यों, कैसरे विलियम के पास, क्योंकि जो मुआहदा वार सेल्स हुआ है ना सन 19 में वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जर्मनी के साथ जो मुआहदा हुआ था, शिकस्त जब वो खा गया, उस मुआहदे में एक दफा है बाकायदा मौजूद कि छह, इस मुआहदे पर अमल दरामद होने से 6 महीने के अंदर वो कुरान की असल कॉपी जो हजरत उस्मान वाली है वो भेजी जाएगी टू द किंग ऑफ अरब। वो बनाना चाहते थे ना हुसैन को, जिसकी वजह से उसने गद्दारी की थी शरीफ मक्का ने, उसको उन्होंने फिर किंग ऑफ अरब अरब करके लिखा हुआ कि अरबों के बादशाह के हवाले किया जाएगा। इससे मालूम होता है कि कैसर के पास वो था उस वक्त उसका। लेकिन कहते हैं कि फिर वहां से किसी तरह तुर्क ले आए और उन्होंने उसको ऐसा दबा के रखा कि किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि यहां है, यानी हमीदुल्लाह साहब ने अब लिखा है तो नुस्खा है और मैं उस तक मेरी अप्रोच हो गई है, आइंदा मैं इसको मुकम्मल करूंगा उस नुस्खे को सामने रख के। अब तो हुकूमत कर दे तो कर दे, अब तो हालात वो नहीं है छुपाने वाले। जो वो नुस्खा ताशकंद वाला वो तो अब आम हो गया है, क्योंकि रूस वालों ने अब उसको बहुत सी कापियां बादशाहों को भी देते हैं अयूब से। कुछ कहा नहीं जा सकता जी, ये लिखने में तो मुझे तो बल्कि अजीब लगा। अगर वो नुस्खा या वो नुस्खा गलत है, उसमें कहीं कहीं इतने खूबसूरत काफ और तोय लिखे हैं कि जी चाहता है, दिल मानता नहीं कि ये उस जमाने की तहरीर हो। अच्छा, दूसरे मसलन मैंने एक चीज बड़ी मुश्किल से ढूंढा, अफा इन, अफा इम माता और अफा इम मिता, ये दो जगह कुरान में आया है। इस पे इख्तलाफ है कि अलिफ जायद है या ये का दंडाना जो है ये जायद है, किस तरह से हमारे यहां उसको अलिफ को जायद समझते हैं, मिस्री उस ये को जायद समझते हैं। पढ़ा तो वो अफा इम नहीं जाता, लेकिन उसमें देखा तो वहां उल्टा बात ये थी, पता नहीं चाक भी है या नहीं, क्यों लिखा, यानी हमजा नहीं है फे के नुकते भी नहीं है, वो तो अलग बात है। ये तो जो जिन किताबों ने डिस्क्रिप्शन दी है ना हजरत उस्मान वाले नुस्खों की, हकीकत यह है कि वो इतनी मैन्यूट डिस्क्रिप्शन है कि आज अगर कहीं कोई दावा करे ना जी ये हजरत उस्मान वाला नुस्खा, तो वो चेक किया जा सकता है उस डिस्क्रिप्शन की रोशनी में। जिन लोगों ने उसको देखा और गर्व किया, उसके बारे में इतनी तफसीलात दी है कि उसको चेक किया जा सकता है कि वो उन पर पूरा उतरता है, मेयार वो है। वा अगना वा अकना वा अन्नहु वा रब्बु शुअरा, वो शुअरा का रब है, उस सितारे का जिसकी वो पूजा करते थे। वा अन्नहु अहलका आदन अलूला वा समूद फमा अबका, उसने पहले आद को भी बर्बाद किया और समूद को भी, पस किसी को ना छोड़ा, अबका युबकी बाकी रखना। वा कौम नूहम मिन कबल, ये भी नसब में आया, अहलकना का मफूल है, और कौम नूह को भी पहले हिलाक किया। इन्नहुम कानू हुम अज़लमा व अतगा, बेशक वो सबसे बड़े जालिम और सबसे ज्यादा सरकश थे। अज़लम और अतगा यहां अफ़लु तफ़ज़ील के सीगे आए हैं और कानू की खबर होने की वजह से नसब में है। नसब अज़लमा का तो जाहिर है, अतगा का वैसे जो है वो जाहिर नहीं होता। वलमुतफ़िका अहवा, और उलटने वाली बस्ती को भी हिलाक किया। अलमुतफ़िका ए तफ़का या तफ़िको का मैना है उलट जाना, ऊपर का हिस्सा नीचे हो जाना, तो उससे यानी मादा अलिफ फे काफ है और उससे बाबे इफ्तेआल आएगा ना, ए तफका या तफको, उल्टाना नहीं है इसका मैना, है मैना उलट जाना। और मोतफका इसम फाइल का सेगा आप देख रहे हैं, मोतफका नहीं, मोतफका उलट जाने वाली। कुरान करीम में कहीं तो ये जमा के सेगे के साथ आया वल मोतफकात, और यहां वाहिद आया। अगर अल को माने जिन्स का या माहूद से नहीं बल्कि जो बस्तियां थी वो सदूम और अमूरा की, तो फिर यहां भी बस्तियों का मैना हो सकता है। फलवो तफिकाता अहवा, ये यहां मो तफिकाता का जो नसब है वो अहवा की वजह से है, मफूल मुकदम है। अहवा मैंने नीचे दे मारा, हवा यहवी नीचे गया और अहवा योवी नीचे फेंका गिराया, पटखना तर्जमा कर ले, नीचे जा फेंकना, दूर नीचे चला जाए, فغشاها ما غشا, پس اس پر ڈھانپ دیا جو کچھ ڈھانپ دیا. فغشا غشا یغشی ڈھانپ دیا, اس بستی پر ڈھانپ دیا یعنی اس کو اوڑھا دیا. ما غشا جو چیز بھی اوڑھائی, عذاب الہی یا بارش یا جو چیز تھی. فبئی آلائی ربک تتبارا, پس کون سی نعمتیں ہیں تیرے رب کی. آلا الن کی جمع ہے, مادہ الف لام واو ہی ہوتا ہے اس کا, تو اس سے آلا جمع ہے. تے اپنے رب کی نعمتوں میں سے ائے کے ساتھ, ہاں جی, ائے کے بعد الن یا الن الف لام اور ہدن کی طرح لکھا جاتا ہے. الن اور الن بھی بعض لکھتے ہیں, اور میرا خیال میں مادہ ویسے واوی ہے, الف لام واو سے ہے, تو اس کی جمع ہے آلہ. اور ائے کے ساتھ یا تو آنا چاہیے تھا نا ائل آلہ ہے, کیونکہ جمع تو آئے تو معرفہ آتا ہے, لیکن وہ معرفہ ہو گیا آگے مضاف ہونے کی وجہ سے. تیرے رب کی کون سی نعمتیں ہیں جن کے ساتھ بے تتمارا تو بحث کرتا ہے یا شک کرتا ہے, یوں بھی معنی ہو سکتا ہے میرا کا, تمارا یا تمارا, تم باہم شک کرتے ہو یا جھگڑا کرتے ہو, یہاں دونوں معنی ہی لگ سکتے ہیں. تو اپنے رب کی کن نعمتوں کے بارے میں شک کرے گا یا کن نعمتوں کے بارے میں جھگڑا کرے گا. تتا مارا مخاطب کا صیغہ ہے, تے لگی ہوئی ہے, تتا فا آلو یوں ہے, یعنی کون سی نعمت کو کہہ سکتے ہو کہ یہ رب کی نہیں ہے, مراد تو یہ ہے. ھذا نذیر من النذر الاولی, یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے. جو دوسرا نذر آیا وہ نذیر کی جمع ہے, اور چونکہ وہ جمع مکسر ہے تو اس کی صفت واحد مونس لگ گئی ہے. ھذا نذیر من النذر, جمع مکسر ہے نذیر کی, ویسے نذیرون بھی ہو سکتی تھی. یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے. پہلوں میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ تو سب سے بعد میں آئے ہیں, تو گزشتہ امتوں والوں میں سے تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی چیزوں سے ڈراتے ہیں جن سے پہلے بھی ڈرایا کرتے تھے, لیکن مضمون یوں آیا کہ یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے, یعنی ان جیسا ہی ہے ڈرانے والا. ازفت العازفہ, قریب آ گئی قریب آنے والی. ازف یا ازفو کے من ہوتا ہے نزدیک ہو جانا, بالکل نزدیک ہو, ٹو اپروچ یا ٹو بی نیئر کے معنی میں ہے. ازفت العازفہ, عازفہ اسم فاعل ہے, نزدیک آ گئی نزدیک آنے والی, مراد ہے قیامت تو آ پہنچی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ, اس کے لیے نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی کھولنا. کاشفہ کو اکثر لغوی کہتے ہیں کہ یہاں مصدر ہے عاقبت کی طرح, ویسے اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس صورت میں کاشفہ پھر کہنا کوئی, کیونکہ اللہ تو کاشف ہو سکتا تھا, مونس کیوں آیا. اگر یہ معنی لے کہ اللہ ہی اس کو کھولنے والا ہے اور کوئی نہیں, تو پھر یہ کاشف آنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ آیا کاشفہ مونس کا صیغہ, تو ناویوں نے کہا کہ اللہ ہی کے پاس ہے اس کا کھولنا, یوں معنی بنے گا, یعنی اس کو کھول سکتا ہے یا ظاہر کر سکتا ہے تو اللہ ہی کر سکتا ہے, تو اس کا کھولنا نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں اللہ کے سوا. یوں کاشفہ کے معنی کھولنا ہوگا, کھولنے والی نہیں مراد ہوگا. افمن ھذا الحدیث تعجبون, کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو, حیران ہوتے ہو. وتضحکون, اور ہنستے ہو. ولا تبکون, اور روتے نہیں ہو کہ کس چیز کا بیان ہے. وانتم صامدون, اور تم تو بیکار ہو. صمد یصمد کا معنی ہوتا ہے یوں ہی بغیر کسی کام کے بیکار کھڑے رہنا, اصل تو صمد یصمد کا یہ معنی ہے. صمد یصمد غالباً نصر یا نصروں سے آتا ہے, بیکار بس یوں ہی کھڑے ہونا, کوئی کام نہ ہو. تو شاہ صاحب نے اس کا معنی کھیل کرنے والا مراد لیا, سمد یس میں تو میں کھیل تو نہیں ہوتا, بیکار کا معنی. ہاں غفلت میں, یعنی جو کسی کو ہے کہ کام اس کو کوئی نہ ہو, یوں ہی جیسے نکما کوئی کھڑا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں سامد. اصل میں یوں سمجھے کہ جو کھلاڑیوں میں کھڑا ہوتا ہے نکما ہی ہوتا ہے, ایک طرح سے نکما کھڑا ہونا بغیر کسی کام اور مقصد کے معنی یہ ہوتا ہے. فاسجدوا للہ واعبدوا, پس تم اللہ ہی کو سجدہ کرو اور عبادت کرو, یعنی واعبدوا ہو اس کی عبادت کرو. تو خمر شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, صدق اللہ العظیم. اقترب یقترب, قریب پہنچنا, کاروباہی کے معنوں میں آتا ہے. اقترب للناس حسابہم وغیرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, وہ گھڑی قریب آ گئی یا کہیں قیامت قریب آ گئی, کیونکہ الساعہ کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے خاص گھڑی جو ذہن میں ہے. وانشق القمر, اور چاند پھٹ گیا, یہ انشق باب انفعال سے ہے, پھٹ گیا. اب چاند کے پھٹنے سے کیا جو وہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے شکل قمر کا, اس کی طرف اشارہ ہے؟ حاشیوں میں تو یہی لکھا ہوتا ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کا معنی جی ہوتا ہے معاملہ واضح ہو گیا, لیکن میرے خیال میں یہ شاید محاورہ نہ ہو. طلعت الشمس تو کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ کہ اب تو جی بالکل بات واضح ہو گئی, سورج نکل آیا, لیکن چاند کے بارے میں یہ محاورہ محل نظر ہے جنہوں نے لکھا ہے. چاند پھٹ گیا, شاید اسی چاند پھٹنے والے واقعہ کی طرف اشارہ ہو. جن لوگوں نے معجزہ شق القمر کو نہیں مانا انہوں نے اس کی کئی تاویلیں کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چاند کے بارے میں بات کہی تھی وغیرہ, لیکن عام روایات میں ہے کہ مکہ میں یہ واقعہ آیا تھا, اور روایتیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں. پھر قاضی سلیمان منصور پوری صاحب کا ہمیں یاد آتا ہے کہ انہوں نے اس پہ اس حیثیت سے بحث کی تھی کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو دنیا میں کہیں تو ریکارڈ کیا ہوا ہوتا. تو انہوں نے پھر ٹائمنگز کے لحاظ سے لیا کہ مکہ میں اگر رات کے 8-9 بجے یہ وقت واقعہ پیش آیا ہو تو, کہ چاند کی رات ہے تو پھر دنیا میں اس وقت کیا کیا ٹائم ہوگا, دنیا سوئی ہوئی ہوگی وغیرہ, اس طرح سے جو مہذب دنیا تھی, اور پھر رات کا واقعہ ہو کسی نے نہیں نوٹ کیا. پھر کہیں جنوبی ہند کے کسی کا راجیہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کے کہیں ریکارڈ میں یہ بات آئی ہے, اگر وہ اس کے ساتھ معاصر ہو کہ وہ رات کو اتفاق سے محل پہ نکلا تو اس نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. یہ کہیں قاضی صاحب نے واقعہ لکھا ہے جنوبی ہند کے کسی راجیہ کے پینلز کے ذمن میں, مجھے پوری بات یاد نہیں ہے.
تفسیر
میں تو دیا ہوا نہیں, راجیہ والی نہیں بات, راجیہ والی بات عام تفسیروں میں نہیں ہے. وہ انہوں نے کہیں سے یہ چیز نوٹ کی تھی, اور جنوبی ہند کے کسی راجیہ کے جو کوئی لکھے ہوئے واقعات وہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے ملے تھے, یہ بہت عرصے کی بات ہے, پڑھا تھا اب مجھے یاد نہیں ہے وہ صحیح انہوں نے ماخذ کیا بتایا تھا, لیکن اتنا یاد ہے کہ جنوبی ہند کے کسی راجیہ کا واقعہ تھا جو شاید اسی زمانے میں ہوا ہے یا کچھ. پھر وہ خیر الزامی جواب بھی ہیں, وہ تو اور بات ہے نا, تو ان کو عیسائیوں کو اور ان کے جواب مناظرے کے دینے کے لیے, کہ وہ کہتے ہیں جی یہ واقعہ ہوا ہوتا تو ساری دنیا نوٹ کرتی. انہوں نے کہا کہ وہ تو رات کی بات ہے, تمہاری بائبل میں لکھا ہے جی سورج 3 دن رکا رہا وہ لڑتے رہے, تو سورج رکا رہا تو یہ تو ساری دنیا کو نوٹ کرنا چاہیے تھا, صرف تمہاری بائبل میں ہی واقعہ رہ گیا. الزامی جواب تو یوں بھی ہو سکتا ہے نا کہ سورج کے رکنے سے ساری دنیا میں ہوتا کہ جی فلاں دن تو وہ 3 دن سورج جو ہے وہ غروب ہی نہیں ہوا تھا, وہ نہیں آیا تو یہ تو رات کا واقعہ ہے. تو مکہ میں اس واقعہ کا پیش آنا, اب وہ کس طرح سے ہوا تھا, پہاڑ کے کہتے ہیں کہ آپ کی انگلی سے وہ 2 حصے انہیں, پھر پہاڑ کے پیچھے تھا, پہاڑ کے نیچے جاتا ہوا دکھائی دیا, کہیں غروب ہونے کے قریب ہوگا. بہرحال یہ واقعہ شق قمر کا روایتوں میں بیان ہوا ہے, اس لیے اس میں شاید اسی کی طرف ہی اشارہ ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کی نشانی ہونا تو ہے ہی, تو چاند ان کے لیے ایک معجزہ تھا. معجزہ ویسے بھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے معجزات ہیں. وہ ان یراو یو
جس طرح قیامت میں چاند کے پھٹ جانے کی خبر ہے تو اس کی جو ہے اللہ رب العزت نے ایک طرح کا وہ دکھا دیا کہ چاند جیسے اب پھٹ گیا ہے اس طرح قیامت
پھٹ سکتا ہے واللہ عالم. یعنی بہرحال معجزہ شق قمر اکثر بیان کیا گیا ہمارے روایات میں.
آپ کی علم میں یہ بات ہے کہ یہ جو ایسٹرونٹ گئے تھے چاند پر انہوں نے آ کر بتایا کہ وہاں پر کچھ رڈار سی ہے کوئی لگتا ہے؟
نہیں میں یہ تو نہیں سنا, دراڑے وہاں چٹانے وٹانے ہیں, خدا جانے دراڑوں کو کیا پتا چلتا ہے, کوئی میدان تھوڑا ہے وہ دراڑ کے بارے میں. ہاں جی ہاں یہاں سے نظر آتے ہیں, اور وہ تو ہمیں تو عام نظر آتے تھے, انہوں نے وہاں شیشے کے وہ شو کیس میں رکھے ہوئے تھے اتنے اتنے پتھر, جہاں ان کا سینٹر ہے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے پہاڑ کے پتھر ہی ہیں عام اللہ عالم. اور ویسے اگر یہ یوں ہو کہ قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا, یعنی قیامت کو چاند پھٹ جائے گا, تو یہ معنی بھی آج کا ہو سکتا ہے, تو ضروری نہیں کہ اس معجزے کا بیان اس میں لایا جائے. ہاں وہ تو ایسا شمس کبیرات جب سورج لپیٹ دیا گیا اور اس طرح سے ہے, تو قیامت میں چاند کے پھٹنے کی شاید یہ بات ہو, لیکن کیونکہ معجزے والی بات روایات میں آئی ہے اس لیے مفسرین لکھتے ہیں. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا, اور اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی نشان, یہاں निशान है कुदरत ही मुराद होगा, क्योंकि आयत कुरानी तो मुराद नहीं है, रा या रा के ज़िमन में तो नहीं आ सकती। जब वो देखते हैं कोई मौजज़ा यो और वो, तो वो एराज कर लेते हैं, ये इन शर्तिया के जवाब में मज़ूम है, यो और एराज कर लेते हैं। व यकूलू, ये भी मज़ूम है, और वो कहते हैं सिहरुम मुस्तमिरुन, ये नकरा मरफू है, यानी इसका एक मुबतदा महजूफ है, यानी यकूलू हाजा सिहरुम मुस्तमिरुन, ये तो पक्का जादू है, सिहर मैंने जादू, मुस्तमिरुन मीम रे रे से बाब इस्तफाल में इस्तमर यस्तमिरु के मैंने तो होते हैं जारी रहना, एक मैंने इसका ये है जिससे हम इस्तमरार, हाँ चलते चले जाना, असल में इन मायनों में आता है ना इस्तमरार, चलते चले जाना, तो इस तरह से मुस्तमिरुन जो चलता चला जाए उसका, यानी इस्म फाइल है इस्तमर यस्तमिरु का, और एक मैंने इसका फिर मजबूत और कवि भी किया गया है, इस्तमर के मैंने कवि होना भी हुआ के है, और इस तरह से मुस्तमिरुन कवि मुसलसल चला जाए रुके नहीं, इसमें भी शायद कुव्वत का मैंने आया है, तो इन्होंने कवि का तर्जमा या ताकत का इसलिए किया है, और किसी ने मजबूत का किया है या जारी
वो, हाँ
असल मैंने तो है कि यह ऐसा जादू पहले भी चला आया और ये भी चला जा रहा है, मतलब तो कहने का ये था, फिर कवि का मैंने यानी मजबूत जो कि हमेशा से आया और चला आया है, इन मायनों में कवि का मैंने लिया उन्होंने। वकज़्ज़बू, और उन्होंने झुठलाया, वत्तबअऊ अहवाअहुम, और उन्होंने पैरवी की अपनी ख्वाहिशात की, वकुल्लु अम्रिन मुस्तकिरुन, यह आगे अलग फिक्रा है, पैरवी के साथ इसका नहीं ताल्लुक, वकुल्लु अम्रिन मुब्तदा है, और हर मामला मुस्तकिरुन जगह पकड़ने वाला है, लफ्ज़ी तर्जुमा तो यूं बनेगा, और हर मामला करार या जगह पकड़ने वाला है, यानी उसका एक फैसला होने वाला है, वो वक्त आने वाला है उसका जब वो हर एक शय तय होगी, हर मामला अगर कर ले मुस्तकिरुन तय पाने वाला, तो ये मुहावरे का तर्जमा होगा, वैसे तो मैंने ठिकाना पकड़ने वाला है, हर मामला ठिकाना पकड़ने वाला है, यानी उसका एक वक्त और जगह मुकर्रर है ठिकाने की जब वो तय होगा। नीम रे रे ही है, इस्तमर्रा यस्तमिर्रो का लफ्जी मैंने तो है चलता चला गया, जारी रहा उसका चलना, मुरूर जारी रहा, इसी से इस्तमरार वगैरह बोलते हैं ना, माजी इस्तमरारी, और ये मैंने लफ्जी मैंने तो है चलते चले जाना, और उससे मुस्तमिरुन के मैंने होंगे जो मुसलसल चलता चला जाए, सेहर मुस्तमिरुन के ये मैंने हो सकते हैं कि ये चला आया है गुज़श्ता ज़माने से और गुज़श्ता कौमों में भी, इन मानों में गोया कि वही असातिरुल अव्वलीन वाला मैंने उन्होंने उसमें आता है, लेकिन बाद मुतरजमीन इसका तर्जमा कभी करते हैं, डिक्शनरियों में भी मुस्तमिर का मैंने लिखा हुआ होता है मजबूत। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाए मा फीहि मुज़दजरुन, और आया उनके पास खबरों में से, मिनल अंबाए नबा उनकी जमा है, उनके पास आया खबरों में से, यानी आई खबरें, खबरों में से वो हिस्सा उनके पास आ चुका है, मा वो जो के, ये जा आका फाइल है, माफी है मुज़दजर, वो चीज आ गई जिसमें के मुज़दजर है, खबरों में से उनके पास वो चीज आ चुकी जिसमें मुज़दजर है, और मुज़दजर का माना किया गया है यहां शाह साहब ने तो किया है नसीहत, असल माना तो है ज़े जीम रे, इसके माने झिड़कने और रोकने के होता है, बल्कि सख्त आवाज से रोक देना किसी को, जजर उर्दू में भी जजर व तबीख इस्तेमाल होता है, उससे जब बाब इफ्तिआल आए तो ये बनेगा इज़दाजरा यज़दाजरो, और इसके बुनियादी मायने हुई है जजर व तबीख करना, झिड़कना, फिर रोकने का मायना भी इसमें आता है, उससे मुज़दजर इसमें मफ़ऊल होगा, तो या तो बने उसका मायना वो जो है ज़र्फ़ का कि झिड़कने की जगह या वक्त, और या फिर मस्दर मीमी भी हो सकता, और इस तरह से मुज़दजर का मायना वही रोकना ही लेकर, और चूंकि अकल रोकती है या नसीहत रोकती है, शाह साहब ने गालबन नसीहत इसलिए तर्जमा किया, वरना मुज़दजर का मायना बुनियादी नसीहत नहीं है, असल मायना तो वही मस्दर मीमी माने तो झिड़क के रोक देने वाली चीज, झिड़क के रोक देना मस्दर का मायना होगा, चीज तो बाद में होगा, یا وہ جگہ یا وقت کا معنی ہو سکتا تھا. شاہ صاحب نے بند کیا, کسی نے اور بھی کیا, عبرت. بہرحال اصل معنی وہی ہے روکنے کا, روکنے کی, روک نہ لیں, یا تو مصدر کے معنی میں, یا روکنے کا وقت. لیکن معافی میں وقت اور جگہ کا معنی نہیں پیدا ہوتا. ان کے پاس آئی خبریں جن میں ہے روک دینا, یا کسی چیز سے روک دینے کا پہلو پایا جاتا ہے, اور ان معنوں میں نصیحت اور حکمت اس نے کیا. حکمت بالغتن, بلکہ اس کی مزید وضاحت ہے, یعنی جا اہم حکمت بالغتن. یہ حکمت بالغتن کے رفع گویا کہ جا کے فائل ہونے کی وجہ سے, اور اس میں واو نہیں آئی بلکہ ایک طرح کا بدل کہہ لے, جو کہ ما آیا ہے نا فائل اصل, تو ما فیہ مزدجر من اللمبا, تو خیر وضاحت کے لیے تھا نا, اس ما پر اس کو عطف تو نہیں کہہ سکتے, اس کا بدل ہے. اور وہ ہے, یا کہے کہ الگ ایک مبتدا ہے, ہوا حکمت, یہی ہے حکمت بالغت, یہ تو ایک بڑی دانائی ہے. یعنی ان خبروں میں جو چیز ان کے پاس آئی ہے وہ بڑی دانائی کی بات ہے. حکمت بالغت ان کے لفظی میں نے پہنچنے والی دانائی, یعنی دل و دماغ تک پہنچنے والی, یا اپنا پورا کام کرنے والی. فما تغنی النذر, پس نہیں فائدہ دیتے ہیں ڈرانے والے. اغنا یغنی, اور اس سے ما لگا, لا تغنی بھی ہو سکتا تھا, یہاں ما نافیہ لگا ہے, اور یہ ما نہ استفامیہ ہو سکتا ہے نہ کچھ اور. حکمت بالغت فما تغنی, یہ تغنی کی البتہ جو نون کی زیر ہے وہ یہ کی علامت ہے, لیکن یہ گری نہیں ہے, کوئی گرنے کی یہاں وجہ نہیں ہے, کوئی ایسا فعل امر یا شرط یا کچھ نہیں آیا جس کی وجہ سے تغنی کی یہ گرتی, نہ مجزوم ہے نہ منصوب ہے, لیکن لکھنے میں اس طرح سے ہی آیا یہاں. یعنی اگر یہ لکھی بھی ہوتی تو بھی ہم تغنی النذر ہی پڑھتے, لیکن یہاں تو لکھی نہیں ہے, اور یہ قرآنی رسم الخط والی بات ہے, ورنہ یہاں یہ ہونی چاہیے تھی موجود. نذر نذیر کی جمع بھی ہے, اس صورت میں یہ لفظ تین چار دفعہ آیا ہے, نذیر کی جمع بھی ہے, اور خود نذرن اور نذرن اس کی پھر جمع کچھ اور بنتے ہیں, نذران یا کچھ, اس کے معنی خود ڈرانا بھی ہوتا ہے, یعنی انذار کے معنوں میں بھی آتا ہے. نذر کا لفظ جو ہے, اور نذر زال کی جزم پڑے, یہ انذار کے معنوں میں بھی ڈکشنری میں ملتا ہے, اس کا معنی بھی ہے ڈرانا, اور نذیر کی جمع بھی ہے. اب چاہے یہاں کوئی معنی کرے کہ ڈرانے نے نفع نہ دیا, ڈرانا نفع نہیں دیتا ہے یا روکتا نہیں ہے, یا کہے کہ ڈرانے والے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے, یوں معنی کر لیں, تو انہیں نذر فائدہ نہیں دیتے ڈرانے والے, یا ڈرانا نذر اور نذر, بلکہ ایک دو اور بھی اس کے ساتھ لکھے ہیں ڈکشنری میں لفظ, شاید نذران ہے یا نذران ہے, پھر وہ مصدر کے معنی میں بمانا انذار ہی آتا ہے. ہاں, یعنی یہاں آپ چاہیں مصدر مان لیں کہ انذار فائدہ نہیں دیتا, چاہے کہیں کہ ڈرانے والے فائدہ نہیں دیتے, کیونکہ اگر نذر بھی لیں تو پھر ہم مانیں گے, بلکہ وہ معنی زیادہ بہتر لگتا ہے نذر بمانا نذیر کی جمع, کیونکہ تغنی مونس کا فعل آیا ہے. اگر نذر ڈرانا مصدر ہوتا تو پھر یغنی بھی ہو سکتا تھا, پھر تے لگانے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. تو اس لحاظ سے یہاں نذیر کا معنی ڈرانے والے نذیر کی جمع وہ زیادہ بہتر لگتا ہے. فتول عنہم, پس تو ان سے روگردانی کر لے, منہ موڑ لے, یعنی اعراض کر. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر, اور یاد کرو اس دن کو, یہاں یوم ظرف ہے اور پہلے کوئی فعل نہیں ہے, وہ تو وقف لازم ہو گیا ہے. یہ نہیں میں نے کہ فتول عنہم یوم یدعو الداعی, تو اس دن ان سے منہ موڑ لے, یہ میں نے الٹا ہو جائے گا, اس لیے فتول عنہم پہ وقف لازم رکھا گیا ہے. کہ یہ عبارت پچھلی عبارت کے ساتھ ہے اور ختم ہوا یہاں ایک فقرہ, آگے الگ ہے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر, یوم جس دن کے, یا اس دن کو یاد کرو جس دن کے. یدعو الداعی پکارنے والا پکارے گا, یہاں بھی دو باتیں قابل غور ہیں, کہ یدعو کی واو بلا وجہ گری ہے, یا نہ کوئی جزم ہے نہ کوئی نصب ہے, اور یدعو کا جو ہے واو ہونی چاہیے تھی, یہ بھی مخصوص قرآنی رسم الخط کی وجہ سے ہے. ایک دو اور جگہ یمحو یمح اللہ الباطل, وہاں بھی واو گری ہے, تو جو علم الرسم والی کتابیں ہوتے ہیں نا وہ ایسے لفظوں کی الگ فرشتے بتاتے ہیں کہ واو کہاں گری ہے، یہ کہاں گری ہے، الف کہاں کہاں گرا ہے، الف زائد کہاں کہاں آیا، ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کو وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں. عموماً یہ زیادتی یا بلا وجہ گرانا الف واو یہ میں واقع ہوتا ہے. تو یدعو کی بھی واو گری اور داعی جو ہے یہ بھی الف لام جب لگے تو اس کے ساتھ یہ آنی چاہیے، الداعی ہونا چاہیے تھا. تو یہ بھی یہ اس طرح گر گئی جیسے لما تغنی کی گر گئی ہے، یعنی لکھنے میں نہیں آئی. اور اگر لکھی جاتی بھی تو اتنا ہی ہوتا کہ یوم یدعو الداعی پڑھتے، اب داعی پڑھتے ہیں. اور بعض قاریوں کا ہے جی کہ اگر یہاں وقف کریں تو پھر وہ یہ ہی پڑھتے ہیں، لکھا ہوا تب ملتا ہے کہ یعنی یوم یدعو الداعی پہ ان کا سانس ٹوٹ گیا تو داع نہیں کہیں گے بلکہ داعی کہہ کے سانس روکیں گے، کیونکہ وہاں اصل یہ ہے. قرات کے مختلف چیزوں میں آتا ہے. تو جس دن وہ پکارنے والا کوئی خاص پکارے گا الا شیئن نکرن، ایک شے نکر کی طرح، نکر کے معنی ہے بالکل عجیب و غریب جو پہلے نہ دیکھی نہ سنی نہ پہچانی جائے. نون کاف رے میں بنیادی معنی تو وہی ہوتا ہے اور یہ واحد ہے لفظ، نکر جمع نہیں ہے، شے کی صفت آیا ہے شے ان نکرن، ایسی چیز جو کہ بالکل اجنبی اور عجیب ہو، پہلے اس کا دیکھا سنا ہی نہ ہو. شاہ صاحب نے صرف ناخوش ترجمہ کیا ہے لیکن بہرحال مطلب یہ ہے کہ جس کی کوئی نظیر دیکھی سنی نہ ہو، ایسی عجیب و غریب چیز. خوش عن ابصارہم، خوش عن خاش عن کی جمع ہے، جیسے ساجد ان کی جمع سجد ان ہوتی ہے، خاش عن کی خوش عن. اچھا یہ تو ان کا حال ہے جس کو پکارا جا رہا ہے نا، وہ ہوں گے خوش عن یعنی خاش عن، بلکہ یا کہیں خاش عین اس طرح سے آ گیا نا، کیونکہ جمع سالم بھی تو بن سکتی ہے. تو وہ عاجز ہوں گے یا خوشو کا معنی یعنی ایک ہوتا ہے نا اجزی کہیں، یا یعنی اس میں طاقت نہ رہے، جیسے خشوع نماز کا تو ہوتا ہے نا عاجزی ظاہر کرنا، تو وہی عاجزی والا میں نہ کر لیں، جیسے عاجز ہوتے ہوئے وہ گویا کہ حال ہوں گے اس کا جن کو پکارا جائے گا. اور اب سارہم یہ رفع ہوئی ہے اسی خشعان کی وجہ سے، یعنی ایک طرح کی عاجز ہو رہی ہوں گی ان کی آنکھیں، ترکیب دوسری آ گئی ہے نا، خوش خاش عین یہ جیسے موت عینا کیا تھا مکن عی رؤوس آیا تھا نا، اپنے سر اٹھائے ہوئے، تو اس طرح سے خاش عینا ابصارہم یا خاش عی ابصارہم، کیونکہ وہ عاجز ہوں گے ان کی آنکھیں. اور پھر معنی تو بنتا ہے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی شرم سے یا مصیبت سے یا کچھ، یہ معنی ہوگا. تو یہ وہ صفت آئی ہے نعت کی کہ خاش عطن نہیں کہا، حال تو ان کا ہے خاش عینا، پھر رفع ابصار کو دے دیا ہے جیسے مختلفن الوانہ وغیرہ میں آیا تھا، اس طرح سے یہ آیا کہ ان کی آنکھوں پر وہ عاجزی ظاہر ہوگی، آنکھوں سے یہ خوف یا خشوع طاری ہوگا. خوش عن ابصارہم، پہلے خوش عن ان کا حال بتایا پھر ابصارہم کہہ دیا. یخرجون من الاجداث، نکل رہے ہوں گے یا نکلیں گے قبروں سے. اجداس پہلے لفظ آ چکا ہے، زیادہ سن میں نے قبر ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو کوئی مصدر وغیرہ کسی معنی میں استعمال ہوتا ہو، قرآن میں نہیں استعمال ہوا اس لیے ذہن میں بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے. نکلیں گے قبروں سے، وہم من الاجداس سے الى ربهم ينسلون، سورۃ یاسین میں بھی پڑھا تھا. کأنہم جراد منتشرون، گویا کہ وہ ہیں بکھری ہوئی مکڑی یا ٹڈی دل. جراد لوکسٹ کو کہتے ہیں اور یہ واحد ہے، لیکن واحد ایک مکڑی ہو تو اسے تو شاید جرادتن کہیں گے، وہ پورا جو اس کا جھنڈ یا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جرادن، اس لیے ٹڈی دل ملخ شاہ صاحب نے کیا ہے. بہرحال منتشر میں نے بکھرا ہوا، جیسے کہ وہ ٹڈی دل جیسے بکھرا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑی تشبیہ ہے. یہاں تو اب تو کہیں ٹڈی دل ختم ہو گئے، آخری بڑا ٹڈی دل کہیں بچپن میں دیکھا تھا اور وہ اتنی کثرت سے تھی کہ صبح گاؤں میں ہم نکلے تھے سردیوں کے موسم میں آئے تھے، تو وہ گلیوں میں اتنی پڑی تھی ٹھٹری ہوئی کہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندی جا رہی تھی، درخت وغیرہ اور کھیتوں کا تو اس نے صفائی کر دیا تھا، اب کنٹرول کر لیا گیا ہے. तो ये अफ्रीका और सहराई इलाकों में ये
छोटा था,
छोटा था, मुश्किल से इतना उंगली थे कुछ गला, और सायद की तरह हो जाना ये तो हमने देखा है कि वो बिल्कुल बादलों की तरह आ जाते हैं, इतनी कसरत से होती है, और जहां तक आसमान में निगाह जाती है वो सब जगह उड़ रही होती है। हाँ, आसमान नहीं नजर आता। अब ये कंट्रोल कर लिया मुद्दत से, पिछले कम से कम 20-25 साल से तो कोई नहीं नजर आता। तो बहरहाल जरात मुंतशरन का जो मफहूम है वो लोग बखूबी समझते थे कि टिड्डी दल की कसरत क्या माना रखती है, जिन्होंने देखा हो उसे वो समझ। नहीं, मेरे ख्याल में बहुत किसी जमाने में तो हर साल ही आते थे, क्योंकि ये सहराओं में बच्चे देते हैं, फिर इनकी बाकायदा कोई माइग्रेशन होती है सहराओं में, राजस्थान और फिर उससे दूसरे इलाकों की तरफ जाते हैं, तो शायद माइग्रेटरी कोई उनकी चीज होती हो। मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत हर साल ही आ जाती थी कहीं ना कहीं से। तो अरबों को जराद मुंतशर, और जराद का लफ्ज वैसे पहले आया है फिरौन के लिखने, फारसलना आलिहिम तूफान अवल जराद अवल कुम्मल, लफ्ज तो हमने पहले भी पढ़ा है, जराद उस पूरे टड्डी दल को या मकड़ी को कहते हैं, हमारे यहां उसे मकड़ी कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में नहीं कहते वाले। हाँ, तो मुहतईन इलद्दाए, उस पुकारने वाले की तरफ तेजी से जा रहे होंगे, अहता युहते, ये पहले भी आया है मुहतईन मुकने से हिम, उसने पढ़ा था, तो वो तेजी से उस पुकारने वाले की तरफ बढ़ने वाले होते हुए है, ये भी हाल खुशान जमा मुकसर होकर हाल आया है, ये वैसे जमा सालिम होकर आया, आंखें आजिज होंगी, आजी जाहिर करते हुए आंखों से यूं कर लें, और फिर कब्रों से निकल रहे होंगे जैसे कि टड्डी दल होता है, वह यूं मालूम होंगे, और आग पुकारने वाले की तरफ तेजी से जाने वाले निकलेंगे, उधर भाग रहे होंगे। यकूलुल काफिरूना, कहेंगे काफिर, हाजा यौमन असिर, ये तो बहुत सख्त दिन है, असीर की असीर में नहीं होता सख्त, तो उसी तरह ऐन सीन रे से फाइलुन के वजन पर, फाइलुन का वजन अमूमन मुबालगे का वजन है, फरहुन मरहुन खसिमुन, इस तरह से इसमें मुबालगे का मायना पैदा होता है ज्यादा, इस तरह से असिरुन ज्यादा तंग ज्यादा सख्त असीर के मुकाबले पर, वरना असीर का भी मायना तो वही है, हागा यौमन असिरुन, ये तंग दिन है, यानी तंगी का दिन है, वैसे यौम की सिफत आई है असिर है, फ़ईल सिफत मुशब्बा का वजन होता है, वैसे वो मुबालगा का वजन नहीं होता, कहते हैं मुबालगे के लिए भी इस्तेमाल होता है, आपने वो पढ़ा भी था किताब में कि फ़ईल सिफत मुशब्बा का वजन है और मुबालगे के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, तो जैसे रहीम वगैरह में है, और ये क्या आया सूरत अल फुरकान में, ذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير, असीर भी और असिर भी, असिर बहरहाल मुबालगे का वजन है, बहुत तंगी बहुत तंग दिन या तंगी वाला दिन सख्त दिन दुश्वार दिन, कज़बत क़ब्लहुम कौम नूहिन, इन लोगों से पहले झुठलाया था नूह की कौम ने भी, कौम नूह कबीला के हिसाब से फेल मोनस आया है, फ़कज़बू अब्दना, अब उनका बहसियत जुमला इंसानों के फिर फेल लगा दिया जमा जमा वाला जमा आकिल वाला, फकज़बू अब्दना, उन्होंने झुठलाया हमारे बंदे को यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, वक़ालू मजनूनुम वज़दुजिर, और कहा पागल है, यहां मजनूनुन से पहले हुवा मुब्तदा यानी माज़ूफ है, वक़ालू हुवा मजनूनुन वज़दुजिर, ये क़ालू पर इस मजनून पर अक्स इस मनु में नहीं है कि ये इसमी नहीं है, ये तो फेल है, इस दाजारा यास दाजेरो झिड़कना अभी पड़ा है, तो उससे फेले मजहूल बनेगा, उस दो जेरा वो झिड़का गया, यानी उसको कहा पागल है और वो झिड़का भी गया, उसको धमकियां दी गई घुरकियां दी गई जो कुछ कह लें, यानी उसके साथ ये काम भी किया गया था। तो ऊपर जो आया मुस्तदजर, वो इस दजार के मानों में मस्दर मीमी ले तो रोकना, और यूं पंद और नसीहत का मायना दिया है, और ये तो सीधा फेल है, उस दोजेरा उफ तो एला, उसको झिड़का गया, उससे दुरुस्त बात की गई, शाह साहब ने यह तर्जमा किया है, तो झिड़कना भी वही होता है उससे यानी कड़वी बातें की गई उसको, फदा आ रब्बहू, बस उसने पुकारा अपने परवरदेगार को, انی مغلوب ان یہ کہ میں ان دعا کی وجہ سے انا آیا ہے ورنہ انی مغلوب ان ہونا چاہیے تھا. انی مغلوب ان میں مغلوب ہوں یعنی مجھ پر غلبہ پا لیا گیا ہے. غالب سے مغلوب تو آسان ہے لفظ, گویا کہ مجھے دبا لیا گیا ہے یا میں اقلیت میں رہ گیا ہوں اور ان کی اکثریت ہے ان من میں مغلوب. فن تصر پس تو بدلہ لے لے, انتصر یا انتصر کا اصل میں نے تو یہی ہوتا بدلہ لینا, لیکن میرا بدلہ لے لے. اور یہ میں نے انتصار کا نہیں ہوتا لیکن یہاں بنے گا لفظ کہ میری مدد کر. ویسے انتصر کا میں نے دوسرے کی مدد کرنا نہیں ہوتا, انتصر کا میں نے ہوتا اپنا بدلہ لے لینا. انتصار کا میں نہیں بدلہ لینا ہوتا, اس میں نصرت کا مادہ ہے یعنی ایسا بدلہ لینا کہ بدلہ لینے والا کامیاب ہو جائے بدلے میں. میں نے وہ کامیابی اور نصرت کا اس میں ہوتا ہے. تو میں تو دب گیا ہوں یا دبا دیا گیا ہوں, اے اللہ تو بدلہ لے یعنی میرا بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء, پس ہم نے کھولے آسمان کے دروازے. بماء منہمر, زوردار پانی کے ساتھ, یعنی پانی آسمان سے آیا. بیان یوں کیا, آسمان کے دروازے کھول دیے. اور ما میں نے تو پانی ہے, من ہمیر ان ہمارا ین ہمیرو, اس کے میں نے زور سے نکلنا. اور بارش کے لیے ہی یہ آتا ہے زیادہ تر, ان ہمارا زور سے برسی. تو من ہمیر ان زور سے برسنے والا, زور سے نکلنے والا, زور سے گرنے والا. ان ہمار کے میں نے زور سے گرنا ہے. تو زور سے گرنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے, یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے اور ان سے آنے لگا زور سے گرنے والا پانی. پتہ نہیں ہمارا کہ کوئی ہو, میں نے قرآن میں استعمال نہیں ہوا, اور بعض لفظوں کے میں نے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہوگا ضرور کچھ میں نے ہوگا, کیونکہ ہے میم رے مادہ ہے ہماری, تو دور قرآن ٹٹی ہے نا قرآن میں کہیں. نہیں سارے میں نے تو کہا, یہ بعض لفظوں کے تو میں نے دیکھنے لیتے ہیں تو پہلے دیکھ کے اگلوں کے پہنچتے ہیں تو پچھلے بھول جاتے ہیں, اتنے شیڈ آف میننگ ہوتے ہیں کہ حیرانی ہو جاتا ہے آدمی. اس لیے ڈکشنری ساری یاد کہاں رہتی ہے, اپنے ڈب کا لفظ دیکھ لو اور بس چلو. تو ان ہمارا یعنی ہمیں زور سے گرنا, ما امن ہمیرے ان زور سے گرنے والے پانی سے ہم نے دروازے کھولے, یعنی بارش آسمان سے ہوئی. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, اور پھاڑ دیا ہم نے زمین کو بلحاظ چشموں کے. فجرنا پھاڑ دیا یا رواں کیا زمین کو, عُيُونًا عَيْن کی جمع ہے, یعنی زمین سے بھی پانی نکلنے لگا آسمان سے بھی برسنے لگا. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ, پس آ ملا پانی. التقا یلتقی ملنا, اب یہ کوئی دو طرف سے پانی آ رہا تھا, وہ اس طرح سے ملا آپس میں تو پھر پہنچے کے معنی میں یہاں آئے گا. الا امرن, اس حد تک یا اس معاملے تک جو کہ قد قدر مقدر کر دی گئی تھی, جس کا اندازہ کر لیا گیا تھا. وہ پانی یعنی ملا, اور جس اس حد تک وہ آ ملے پانی جو ان کا اندازہ تھا, وہ قدرہ سے پہلے کر دیا گیا تھا. وحملناہ علی ذات الواح و دوسر, اور ہم نے اٹھایا اس کو, یہ ہو کی ضمیر نوح علیہ السلام کے لیے ہے, علی ذات الواح و دوسر, اس چیز پر جو تختوں والی تھی اور میخوں والی تھی. الواح لوح کی جمع ہے, لکڑی کے تختے پھٹے جسے ہم کہتے ہیں. دوسر کا واحد ہے دسار, ہے نی,
بہت مشکل ہے
یہ صورت بہت مشکل ہے. اور دوسر کا بعض نے کہا ہے کہ کوئی لکڑی کی کوئی خاص چیز ہوتی تھی کھجور سے, یا وہ جو ہے شابلوت کی لکڑی, اس سے بناتے تھے اور درزے بھرتے تھے کشتیوں کی, شاید وہ بھی دسار کہلاتا ہو. لیکن دسار کا میں نے میخے ہی سب نے کیا ہے, میخ کی اصل عربی تو مسمار ہوتی ہے اصل میں. دسار ایک میخ اور دو سر یعنی ہاں جمع اس کی. رسی کا تو رسیاں, رسی کا بڑا تو نہیں ہے, یہ بھی کسی انگریزی میں پڑھا تھا, عام ڈکشنری میں تو دسار میں نے مسمار ہی لکھا ہے. میخے किसी और किताब में पढ़ा था कि पाम ट्री के कोई बनाते हैं वो, जिससे लकड़ियों को बांधते नहीं है, जोड़ते हैं शायद उसके कोई इससे दरमियान में, पुराने जमाने की कश्तियों का कोई तरीका होगा, लोक वोक लगाते थे, चर्बी लगाते थे, गालबन उस किस्म की किश्तियां अब भी दुबई और अबू धाबी वगैरह में बनती हैं मामूली फिशिंग पर्पजेज के लिए। तो ये वो मुराद कश्तियां हैं जो फट्टों और मेखों से बनती थी, जाते अलवाहन व 200 रिन तख्तों और मेखों वाली पर बिठाया, वो मुराद है कश्ती जो तख्तों और मेखों से मिलकर बनती है। और बाद ने इससे यह भी कहा कि अगर कुरान करीम के अल्फाज इस तरह कोई तारीखी सिग्निफिकेंस रखते हैं, इसका मतलब यह है कि नूह अलैहिस्सलाम उस जमाने में हुए हैं जब लोहा या धातु दरियाफ्त हो चुकी थी, क्योंकि मेखें वगैरह या अगर मेटल का इस्तेमाल था कोई, तो ये एक यूं है कि तारीखी इस्तिंबात बनता है, वल्लाहु आलम वैसे बयान हो इस तरह का। लेकिन देखिए कुरान का कमाल देखिए कि जो चला है फासला वज़्दुजर मुंतशिर मुनहमिर, तो यहां कश्ती वरना हमल ना हो अलल फुल्क हमल ना हो अलल जारियत, वो कश्ती के लिए भी वो लफ्ज आया जो बिल्कुल उसी काफिये पर आया है, ज़ाते अलवाहन व 200 रिन तख्तों वाली और मेखों वाली, तजरी बे आयुन ना जो कि चलती थी हमारी आंखों के सामने, बेकमना है दो तीन दफा ये लफ्ज आया है, हमारी आंखों के साथ यानी हमारी आंखों के सामने, फिर मुराद है हमारी निगरानी में, जजा अल्ले मन कान को फिर जजा होते हुए हाल होगा, यानी वो कश्ती और या उसका निकालना बदला था उसके लिए, कान को फेरा जिसका इनकार किया गया था, या कान को फेरा माजी बईद भी हो सकता है, इनकार किया गया था जो भी, या कान को माने फेल नाकिस जो ऐसा था कि कुफेरा इनकार किया गया, यानी कुफेरा भी ही के मन में आएगा, क्योंकि वर्ब ये अक्सर आता है ना काफारा बिल्ला है, तो इस तरह से यहां भी गोया कि बेमाजूफ है, ले मन कान कुफेरा भी ही ये जजा होते हुए उसके लिए जिसका इनकार किया गया, जिसको न माना लोगों ने उसकी ये जजा के तौर पर हमने यूं किया, जजा अन या तो मफूल लहू माने या हाल माने, वलकत तरक ना आयतन और हमने उसको छोड़ा एक निशानी होते हुए, या फिर आयतन एक तरह का हाल ही बनेगा।